डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट, नीतिवचन 10 से 15 में प्रेरणा 2024 टेड हिल्डेब्रांट वीडियो जेट्स 35.4 में मेरा लेख दिसंबर 1992 433-44। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं जो नीतिवचन अध्याय 10 से 15 में प्रेरणा और प्रतिपक्षी समानता पर अपने शिक्षण में हैं। नीतिवचन की पुस्तक में विशेष विषयों पर हमारी अगली प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यदि आप नीतिवचनों का अवलोकन करने और पूरी चीज को विस्तार से जानने में रुचि रखते हैं तो हमें नॉट हेन द्वारा 20 व्याख्यानों की एक व्याख्यान श्रृंखला मिली है जो नीतिवचन पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। हमें हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में मैकमास्टर विश्वविद्यालय से गस कोंकेल भी मिले हैं, जिन्होंने नीतिवचन की पूरी किताब का सर्वेक्षण करते हुए 22 व्याख्यान दिए हैं। साथ ही व्हीटन कॉलेज से डैन ट्रायर भी हैं, जो नीतिवचन और ईसाई जीवन पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस श्रृंखला में हम नीतिवचन की पुस्तक की कुछ तकनीकी चीजों के बारे में गहराई से जानेंगे। तो वे तकनीकी होने जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें उतरेंगे और गहराई तक जाएंगे। तो आज के लिए हमारा विषय नीतिवचन अध्याय 10 से 15 में प्रेरणा और विपरीत समानताएं हैं। इसलिए कुछ परिचयात्मक प्रश्न हैं जो हम खुद से पूछना चाहते हैं कि प्रेरणा के संबंध में और नीतिवचन के साथ प्रेरणा कैसे काम करती है। लौकिक ऋषि ने अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया? जब आप छात्रों के साथ काम कर रहे हों तो प्रेरणा एक बड़ा विषय है और उन्हें कैसे प्रेरित रखा जाए। नीतिवचन में ऋषि ने अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित रखा? या पारिवारिक परिवेश में इसे और अधिक लेते हुए एक पिता या मां अपने बच्चों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रेरित कर सकते हैं? और इसलिए हम प्रेरक सिद्धांत को देखेंगे। दरअसल हम मनोविज्ञान के स्कूलों के कुछ प्रेरक सिद्धांतों के साथ काम करेंगे जिन्होंने गहराई से प्रेरणा का अध्ययन किया है, और हम देखेंगे कि वह शोध और मनोवैज्ञानिक शोध प्रेरणा को कैसे फिट करते हैं, यह नीतिवचन की पुस्तक के साथ कैसे फिट बैठता है। और इसलिए हम प्रेरणा के मनोविज्ञान और नीतिवचन की पुस्तक के बीच कई प्रकार का एकीकरण कार्य करेंगे। और इसलिए हम पूछते हैं, एक पिता या माँ वे अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं? और फिर अंत में सुलेमान ने बुद्धि की संरचना कैसे की और दूसरों को बुद्धि का अनुसरण करने के लिए कैसे प्रेरित किया? सुलेमान उसने लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित किया? तो आइए अपने आप से एक तरह का व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछना शुरू करें। प्रेरक उपवाक्य क्या है? नीतिवचन अध्याय 16 श्लोक 12 हमें इसका एक उदाहरण मिला है। राजाओं के लिए बुराई करना घृणित है। राजाओं के लिए बुराई करना घृणित है। इस मकसद खंड के लिए और फिर ट्रिगर के लिए हम हिब्रू में इस शब्द को देखने जा रहे हैं, यह की है, और हम इस शब्द की को एक मकसद खंड को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। इसलिए राजा के लिए बुराई करना घृणित है, क्योंकि सिंहासन धर्म से स्थिर होता है, क्योंकि या क्योंकि सिंहासन धर्म के द्वारा स्थापित होता है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है। राजा दुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए? एक राजा के लिए बुराई करना घृणित है। वह बुराई क्यों न करे? क्योंकि या क्योंकि सिंहासन धर्म के द्वारा स्थापित होता है। इसलिए यदि कोई राजा अपना सिंहासन स्थापित करना चाहता है तो तुम धर्म के साथ चलो। अब प्रेरक उपवाक्यों का इतिहास लगभग 1953 तक जाता है। जेम्सर नाम का एक व्यक्ति था और जेम्सर ने 1953 में इसराइल में मकसद खंडों पर एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेसोपोटामिया, मिस्र, प्राचीन दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में इसराइल में मकसद खंड अद्वितीय थे। मकसद खंड विशेष रूप से पुराने नियम में चित्रित किए गए थे, तनख, जबकि उनके बारे में उनके पूर्ण कथनों का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, अन्य संस्कृतियों में प्रेरक उपवाक्य हमें सोसिनो और उत्ती नामक एक साथी से एक और हालिया छात्रवृत्ति मिलती है। बाइबल के 30% कानून प्रेरित हैं। 30% कानूनों में ऐसा है और फिर आपको इसका कारण बताएं। 30% कानून ऐसा करते हैं जो कि 375 है। यदि आप विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो 1238 आदेशों में से 375। हालांकि प्राचीन निकट पूर्वी कानून कोड केवल 5% से 6% प्रेरित हैं। तो प्राचीन निकट पूर्व में 5% से 6% कानून संहिताओं में कानून प्रेरित होते हैं, जबकि इसराइल में 30%। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसराइल में 30% प्राचीन निकट पूर्वी कानून कोड में 5% या 6%। वैसे यह कानूनी सामग्री के बारे में बात करने के विपरीत है, लेकिन जब आप ज्ञान सामग्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान सामग्री में उच्च स्तर की प्रेरणा होती है, और इसलिए शारपाक के सुमेरियन निर्देशों में, अक्कादियन ज्ञान परिषदों में, मिस्र में अनी और पट्टाहोटेप जैसे निर्देशात्मक ग्रंथों में, साथ ही युगैरिटिक ग्रंथों में, शुलेम अविलेम के निर्देशों में उनके अपने ज्ञान ग्रंथ और ज्ञान ग्रंथ हैं, अधिक प्रेरणा रखें जिसकी आप अपेक्षा करेंगे, क्योंकि वे ज्ञान ग्रंथ वास्तव में उपदेशात्मक या पारमार्थिक ग्रंथ हैं जो सूर्य को सिखाते हैं, दरबार में दरबारियों को पढ़ाते हैं और इसी तरह की चीजें हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे और वास्तव में मामला यही है। अब मुझे बाइबल की इस चेतावनी के कुछ उदाहरण देने दीजिए। उन्हें एक चेतावनी कहा जाता है जो या तो निषेध हो सकता है, आप जानते हैं ऐसा मत करो, एक चेतावनी जो कहती है कि ऐसा मत करो, या यह एक आदेश हो सकता है। दूसरे शब्दों में आपको यह करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसा मत करो यह निषेध होगा, ऐसा करना एक अधिदेश होगा, और फिर यह चेतावनी, चाहे वह निषेधात्मक हो या आदेश हो, किसी भी तरह से नकारात्मक या सकारात्मक प्रबलित होती है। और इस मकसद खंड के साथ ऐसा न करें क्योंकि या यही मामला है, ऐसा इसलिए करें या इसके लिए करें, और इसलिए मैं आपको बस कुछ उदाहरण देता हूं, और ये तो सर्वविदित हैं, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 7, जैसे ही मैं निर्गमन 20 कहता हूं आप 10 आज्ञाओं के बारे में सोचते हैं। सचमुच मामला यही है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, वह निषेध है। यह एक चेतावनी है और यह नकारात्मक है, यह निषेध है। अपने भगवान भगवान का नाम व्यर्थ में न ले, या क्योंकि अब यह हमारे मकसद खंड की को ट्रिगर करता है, और यह फिर से है शब्द की के लिए, या क्योंकि प्रभु उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा जो उसका नाम व्यर्थ लेता है। अथ भगवान का नाम व्यर्थ में मत लो जो चेतावनी देता है उस व्यवहार को निषिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि जो कोई व्यर्थ उसका नाम लेता है यहोवा उसे निर्दोष न ठहराएगा। अब मुझे बस पलटने दीजिए और नीतिवचन और नीतिवचन की पुस्तक के अध्याय 3 श्लोक 1 को पढ़ने दीजिए। हमें एक और चेतावनी मिली है जिसके बाद एक मकसद खंड है। तो यह काफी हद तक एक जेम्सर और ये अन्य साथी हैं। लोगों ने एक उद्देश्य खंड के बाद चेतावनियों के साथ बहुत कुछ किया, और इसलिए आप और मकसद खंड का नेतृत्व आम तौर पर की क्योंकि या के लिए होता है और फिर उछाल आता है, आप जानते हैं आप एक मकसद खंड में हैं। इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 3 श्लोक 1 में एक चेतावनी, मेरे बेटे मेरे शिक्षण निषेध को मत भूलना, इसे मत भूलना। ठीक है, इसलिए है मेरे पुत्र चितौनी, मेरी शिक्षा को मत भूलना, परंतु मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में स्मरण रखना। अब यह एक जनादेश है। ध्यान दें, भूल न जाएं, उन्हें अपने दिल में रखें। क्यों? क्योंकि या क्योंकि जीवन के दिनों और वर्षों की लंबाई और शांति वे आप में जोड़ देंगे। तो फिर आपके पास एक चेतावनी है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निषेधात्मक, निषेधात्मक और एक आदेश। मेरी शिक्षाओं को मत भूलो, उन्हें अपने हृदय में रखो। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें लंबे दिनों और वर्षों तक जीवन और शांति देंगे। तो वह फिर से कि इसके लिए ट्रिगर करता है, क्योंकि और नीति वचन या भजन अध्याय 2 श्लोक 12 में हमें एक चेतावनी मिलती है। नीति वचन में बेटे को चूमो या मुझे क्षमा करें, भजन अध्याय 2 श्लोक 12 बेटे को चूमो, और फिर यही आदेश है, यही आदेश है, बेटे को चूमो। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और तू मार्ग में ही नष्ट हो जाए, और ऐसा न हो वहां एक मकसद खंड भी ट्रिगर हो रहा है। कलम हिब्रू में शब्द है कलम, वरना वह क्रोधित हो जाए और तुम रास्ते में ही नष्ट हो जाओ। इसलिए बेहतर होगा कि आप बेटे को चूमें, अन्यथा आप जानते हैं आपको यहां कुछ परेशानी होने वाली है। वह क्रोधित होने वाला है और आप रास्ते में ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर से हमारा कीवर्ड है, क्योंकि उसका क्रोध तुरंत भड़क उठता है, और इसलिए यह वास्तव में आपको एक प्रकार का दोहरा प्रेरक उपवाक्य देता है। कलम से शुरू होने वाला, ऐसा न हो, ऐसा न हो, आप जानते हैं वह क्रोधित हो, और आप जानते हैं वह बेटे को चूम रहा है, वह राजा है, और भजन के अध्याय 2 में चीजें या उसके क्रोध के लिए उसका क्रोध, क्योंकि कि वहां दूसरी प्रेरणा, उसका क्रोध शीघ्र भड़क उठता है। तो ये कुछ चीजें हैं। जेम्सर ने अपने अध्ययन में मूल रूप से उद्देश्यों की चार श्रेणियों को अलग किया है। उनमें से एक व्याख्यात्मक चरित्र है। तो दूसरे शब्दों में आप एक उपदेश देते हैं, आप एक मकसद से उसका पालन करते हैं और मकसद कुछ समझाता है। इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 19 श्लोक 25 कहता है, ठट्ठा करने वाले को मारो, और फिर यह बताता है, ठीक है, क्यों आपको उपहास करने वाले पर प्रहार क्यों करना चाहिए, और सरल लोग विवेक सीखेंगे। तो कारण मकसद होगा, और सरलता से विवेक सीखें। समझदार मनुष्य को डांटो। दूसरे शब्दों में आप ऐसा किसी समझदार व्यक्ति के साथ करते हैं, और उसका मकसद क्या है? उसे ज्ञान प्राप्त होगा। आपको शायद यह याद होगा, नीतिवचन 22:6, एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए। यह आपको एक शासनादेश बता रहा है। यह मूल रूप से कह रहा है कि एक बच्चे को उसी तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह से उसे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब वह उससे अलग न होगा। तो यह आपको एक प्रकार का मकसद देता है, एक आदेश जिसके बाद एक मकसद, या एक चेतावनी, एक आदेश जिसके बाद एक मकसद होता है। तो यह व्याख्यात्मक है। वह आदमी समझा रहा है कि आप बच्चे को उस तरह से प्रशिक्षित क्यों करते हैं जैसे वह करेगा, क्योंकि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह उससे अलग नहीं होगा, और इसलिए यह चीजों को समझा रहा है। वह व्याख्यात्मक चरित्र है, और जेम्सर नोट करते हैं कि दूसरा नैतिक सामग्री है, और इसलिए यह कहता है, उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 19:21 में तुम्हें दया नहीं आएगी। एक निश्चित कानूनी संदर्भ में आपकी आंख को दया नहीं आएगी, आपकी आंख को दया नहीं आएगी। वह प्राण की संति प्राण, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत, हाथ की संति हाथ, और पाव की संति पाव होगा, और इसलिए यह कह रहा है कि आपको निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है, आपको दया नहीं दिखानी चाहिए। दया का समय है, लेकिन न्यायिक मामले में दया का समय नहीं है, दया का समय नहीं है, और इसका निष्पक्ष होना जरूरी है। इसे निष्पक्ष होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप क्षमा करते हैं, यदि आप दुष्टों को क्षमा करते हैं और निर्दोषों को दंडित करते हैं, तो उदाहरण के लिए आपकी संस्कृति और सामग्री में बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। और यह कहता है, नहीं नहीं, इसे निष्पक्ष होने की जरूरत है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और चीजों को निष्पक्ष होने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, राजा अति प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। आप राजा के दांत या दांत तोड़ देते हैं और आप उसे मारते हैं और वह अपना दांत तोड़ देता है और फिर वह आपका सिर काट लेता है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इसे निष्पक्ष और सम होना चाहिए, और इसलिए यह नैतिक है। उद्देश्य के नैतिक होने के समर्थन के लिए एक नैतिक कारण दिया गया है। अब वहां सांस्कृतिक और धार्मिक भी है, और इसलिए यहां नीतिवचन 20:22 में दिया गया एक धार्मिक कारण है। यह मत कहो कि मैं बुराई का बदला दूंगा। यह मत कहो कि मैं बुराई का बदला दूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो। क्यों? प्रभु की प्रतीक्षा करो और वह तुम्हें बचाएगा। मकसद प्रभु की प्रतीक्षा करना है, और इसलिए यहां एक धार्मिक उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में, आप स्वयं बुराई का बदला नहीं लेते, तुम प्रभु की प्रतीक्षा करो, और इसलिए यह वहां एक धार्मिक मकसद देता है। और इसलिए हमने एक व्याख्यात्मक चरित्र देखा है जहां यह बताता है कि क्यों। हमने नैतिक सामग्री देखी है जहां यह एक नैतिक संहिता के आधार पर समझाती है, और फिर यह धार्मिक या सांस्कृतिक बात जहां यह कहती है कि प्रभु तुम्हें बचाएंगे। तो ऐसा मत करो। ऐतिहासिक कारण भी हैं। और लैव्य व्यवस्था 19:34 में यह कहा गया है कि जो परदेशी तुम्हारे साय रहे, उससे तुम अपने ही देश के समान व्यवहार करना। तुम उससे अपने समान प्रेम करोगे। परिचित लगता है ना? तुम उससे अपने समान प्रेम करोगे। मसीह की महान आज्ञा कहाँ है? प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करो और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे आप लैव्य व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। 19 लैव्य व्यवस्था की पुस्तक को बाहर फेंकने में सावधान रहें। मेरा मतलब है कि वहां एक पूरा समूह है, वहीं दूसरी महान कमांड पाई जाती है। लैव्य व्यवस्था 19 और हम 34 में हैं। और तू उससे अपने समान प्रेम रखना। क्यों? के लिए, और फिर हमें यह मिल गया है। यह ट्रिगर्स के लिए है, तो यह एक मकसद खंड है। यह तुम्हें एक मकसद दे रहा है। तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेशी थे। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, क्योंकि तुम मिस्र में परदेशी थे, इसलिए तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। मिस्र में आपके साथ क्या होगा इसके आधार पर। इसलिए एक ऐतिहासिक है, यह एक ऐतिहासिक मकसद है। वह इतिहास में वापस जाता है और कहता है, क्योंकि आप गुलाम थे, आप जानते हैं, आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना चाहिए। तुम्हें विदेशियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम मिस्र में विदेशी थे। और इसलिए यह एक ऐतिहासिक कारण का उपयोग करता है। यह बहुत रुचिपूर्ण है। और हमने अपने पिछले सत्रों में से एक में नीतिवचनों के भिन्न होने के बारे में बात की थी। और यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ नीतिवचन कभी भी ऐतिहासिक कारण का उपयोग नहीं करते हैं। नीतिवचन की पूरी किताब अपने सभी उद्देश्यों के साथ कभी भी एक बार भी ऐतिहासिक कारण का उपयोग नहीं करती है कि आप मिस्र में गुलाम थे, इसलिए ऐसा करें। और इस प्रकार का उद्देश्य पूरे पुराने नियम में पाया जाता है, लेकिन यह नीतिवचन में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। शून्य। अब पोस्टेल नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में मेरा मानना है कि वह एक शोध प्रबंध है। वह विशेष रूप से नीतिवचन के उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक उन्मुख है, और उन्होंने यह भी नोट किया कि घृणित उपवाक्य अक्सर एक प्रेरणा में पाया जाता है। यह घृणित बात प्रभु के लिए है या प्रभु इससे घृणा करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग नीतिवचनों में किया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट उद्देश्य वाले उपवाक्यों में नहीं है। इसलिए आमतौर पर कानून में कहा गया है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु इससे घृणा करते हैं या यह प्रभु के लिए घृणित है। नीतिवचनों में कई बार यह इसे एक अलग इस घृणित या भगवान से घृणा करता है को एक अलग मकसद खंड में नहीं रखता है। तो यह नीतिवचन में कुछ मुद्दे उठाता है। हमारे पास कभी कभी यह अलग नहीं होता है, आप जानते हैं, मकसद खंड के कारण ऐसा न करें। कभी कभी प्रेरक उपवाक्य बिना किसी सथी व्याकरण के कहावत में बंध जाता है, क्योंकि की के लिए की गायब है और इसलिए की गायब है। ऐसा कुछ और ही लगता है, लेकिन फिर भी हम यहां हैं। तो यह आपको दिखाता है कि कभी कभी इन मकसद खंडों की या पेन या इन चीजों के साथ एक सथी व्याकरण, क्योंकि नीतिवचन में कई बार मकसद खंड को ट्रिगर करने से इसमें कोई स्पष्ट मकसद खंड नहीं होता है। तो यह हमें बताता है कि हमें नीतिवचन में जाने की जरूरत है। व्याकरणिक रूप से चिह्नित किए जाने पर यह इतना स्पष्ट नहीं होने वाला है, बल्कि नीतिवचन 10 से 15 में एक लौकिक कहावत में प्रेरणा क्या है और प्रेरक प्रेरणा कैसे कार्यान्वित की जाती है, इसका पता लगाने के लिए हमें और अधिक गहरी संरचना में जाने की आवश्यकता है। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 25 में यह कहता है, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तें तुम आग में जला दोगे, जो चांदी या सोना उनमें है उसका लालच न करना और न उसे अपने लिए लेना, ऐसा न हो कि तुम उसके द्वारा फंस जाओ। हमारी कलम ऐसी है कि कहीं आप इसके जाल में न फंस जाएं। नंबर 1 और नंबर 2 की मकसद खंड को चिह्नित करता है या क्योंकि यह भगवान के लिए घृणित है। तो यहां की का चिन्ह इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यह घृणित है, भगवान इससे घृणा करते हैं। मुझे लगता है कि ESV अक्सर इसका इसी तरह अनुवाद करता है। अन्य अनुवाद कहते हैं कि यह प्रभु के लिए घृणित है। हालांकि देखिए, अब यह कानून में है। यह कहता है क्योंकि यह यहोवा की दृष्टि में घृणित है। देखो, यह प्रभु के प्रति इस घृणित कार्य में नीतिवचन में कैसे आता है। यह इनकी और एक अलग मकसद खंड से अलग नहीं है। नीतिवचन अध्याय 11 श्लोक 1 कहता है, झूठे तराजू से यहोवा को घृणा आती है या झूठे तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु न्यायपूर्ण तराजू से वह प्रसन्न होता है। तो आपको अपना मकसद यहां मिलता है। आपको उचित वजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। आपको अनुचित वजन से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि यह इस बारे में है कि प्रभु इससे घृणा करते हैं। लेकिन यह नहीं कहता क्योंकि प्रभु इससे घृणा करते हैं कि वहां गायब है, और यह सब एक वाक्य में है। यह अलग नहीं हुआ है। पॉल ने फिर भी नोट किया कि नीतिवचन में आपको मूल रूप से उनमें से 3 श्रेणियां मिली हैं, प्रेरणा की बड़ी श्रेणियां। एक है धार्मिक, यह प्रभु के लिए घृणित है, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। एक और सेट इनका एक बैच व्याख्यात्मक है, जहां वे बताते हैं कि आपको कुछ क्यों करना चाहिए। और फिर तीसरा और नीतिवचन में बहुत महत्वपूर्ण रूप से यह परिणामी है, आपके निर्णय के परिणाम क्या हैं? आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, या जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और इसलिए ऐसा किया गया है। और पोस्टेल फिर नोट करता है एक तरह की सकारात्मक और नकारात्मक संयोजकता है। तो यहाँ यह एक प्रकार का बाइनरी सेटअप है। एक एक प्रकार का वचन या अपेक्षा है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह कुछ अच्छा होगा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। दूसरी ओर जब यह ऐसी चीज है जिसे आप नहीं चाहते हैं तो यह हतोत्साहित करने वाली या टालने वाली चीज है। और हमें नीतिवचन में याद रखना होगा कि वह इसे वचनबद्धता कहता है। वादा करना सकारात्मक है, मनाना नकारात्मक है। मुझे वहां वादा शब्द पसंद नहीं है क्योंकि लोग यह सोचने लगते हैं कि कहावतें वादे कर रही हैं। और हम उसे अलग करना चाहते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कहावतें वादे नहीं हैं। कहावतें वादे नहीं हैं। और इसलिए आप यह नहीं कह सकते ठीक है यहां एक कहावत है तो इसलिए मैं इस परिणाम की गारंटी देता हूं। हमें एक और व्याख्यान में जाना होगा। हम नीतिवचन और कहावतों में सूक्ष्म शैली के स्तर के बारे में बात करेंगे। यह कोई वादा नहीं है और इसलिए आपको उस भ्रम से बचने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। कहावत एक कहावत है और इसका मतलब आम तौर पर सच होना है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है और इसलिए आम तौर पर चीजें इसी तरह काम करती हैं। इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 10 पद 2 यह कहता है दुष्टता से प्राप्त धन लाभ नहीं होता परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। तुम कहते हो अच्छा धर्म मृत्यु से बचाता है इसलिए भगवान मुझे हमेशा मृत्यु से बचाएंगे। अच्छा यह बात जॉन बैप्टिस्ट को बताओ। क्या ईश्वर सदैव लोगों को धर्मी लोगों को मृत्यु से बचाता है? हमेशा नहीं और इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यह एक सामान्यीकृत बयान है और इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आवश्यक रूप से लिया जाए। मेरा मतलब है जॉन द बैप्टिस्ट आपको वहां एक समस्या है। उसका सिर काट दिया जाता है और वह एक धर्मी व्यक्ति है और सभी समय के महानतम भविष्यवक्ताओं में से एक है। तो चेतावनियां आदेश या निषेध अधिकतर यह चेतावनियां और एक प्रेरक उपवाक्य हैं। यह संयोजन अधिकतर नीतिवचन 1-9 तक के निर्देशों में पाया जाता है। तो नीतिवचनों में चेतावनियां होती हैं। इस चेतावनिया के बाद इसकी क्योंकि के साथ एक प्रेरक उपवाक्य आता है और फिर यह वैसे ही चलता रहता है। वे नीतिवचन अध्याय 1-9 तक 39 बार पाए गए हैं। वे नीतिवचन में निर्देश हैं 1-9 तक निर्देशात्मक खंड है। अध्याय 10-22 में वे केवल 13 हैं। तो आपके पास वास्तव में अधिक अध्याय हैं। 10-22 और 39 के बजाय आपके पास उनमें से एक तिहाई के पास वे मकसद खंड हैं। और इसलिए नीतिवचन 10 के वाक्य कथनों को अधिक विस्तृत निर्देशों से अलग करने के बाद वाक्य कथनों में प्रेरक उपवाक्यों का वास्तव में अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए प्रायः प्रेरक उपवाक्य के साथ अभिप्रेरक उपवाक्य की चेतावनी पाई जाती है। इसलिए उदाहरण के लिए मुझे नीतिवचन अध्याय 1:15-16 में से एक का उपयोग करने दीजिए। यह कहता है यह एक निषेध है मेरे बेटे उनके साथ रास्ते में मत चलो। कुछ बुरे लोग बेटे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहता है उनके रास्ते में मत जाओ। वह निषेध है। यह एक चेतावनी है। वह निषेध है। ऐसा मत करो। क्यों? अपने पैर उनकी राहों से रोको। ठीक है। इसलिए उनके साथ न चलें। उनके साथ अपना पैर वापस पकड़े। क्यों? कि अब हमारा शब्द है। हमारा शब्द क्योंकि उनके पैर बुराई की ओर दौड़ते हैं और वे खून बहाने के लिए उतावली करते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ न घूमें, उनके रास्ते में मत जाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य, उनके पैर इन बुरी चीजों के पीछे भागते हैं और वे खून बहाते हैं। आप उस हिंसा और सामान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यह नीतिवचन अध्याय 1 श्लोक 15 और 16 है। तो आपके पास इसके निषेध या इसके विरुद्ध सलाह देने वाली एक चेतावनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खून बहाया। तो उसी प्रकार का एक और उदाहरण नीतिवचन अध्याय 3 श्लोक 1 और 2 में मिलेगा। कहावतें बहुत स्पष्ट हैं। मेरे बेटे, मेरी शिक्षा मत भूलना। ठीक है, इसे भूलो मत, बल्कि इसे अपने दिल में रखो। ठीक है, तो इसे मत भूलना। निषेध, भूलो मत, बल्कि इसे अपने दिल में रखो। इसे मत भूलना। शासनादेश, इसे अपने दिल में रखो। क्यों? जीवन और शांति के दिनों और वर्षों की लंबाई के लिए। जैसा कि हमने पहले बताया था, वे आपको जोड़ देंगे। तो आपका मकसद खंड है। तो आपके पास एक नकारात्मक, एक चेतावनी है, जिसमें निषेध भी शामिल है। एक जनादेश मत भूलना, इसे करें। और फिर एक मकसद खंड। तो इसके दो पहलुओं के साथ प्रेरक चेतावनी, उसके बाद जीवन और शांति के दिनों और वर्षों की लंबाई के लिए एक प्रेरक खंड। वे तुम्हें जोड़ देंगे। अब नीतिवचन 14:07 यह कहता है, मूर्ख का सामना छोड़ दो। नीतिवचन 14:07, मूर्ख का साथ छोड़ दो, क्योंकि वहां तुम्हें ज्ञान की बातें न मिलेंगी। अब जो बहुत दिलचस्प है वह यह है कि जिस शब्द का वहां अनुवाद किया गया है वह वास्तव में हिब्रू शब्द वह है, जिसका अर्थ है और इसलिए आमतौर पर अनुवादित और या लेकिन और यहां यह एक मकसद वाली बात अधिक लगती है। और इसका अनुवाद इसलिए किया गया है क्योंकि वहां आपको शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन वास्तव में यह वहां हमारा की शब्द नहीं है जो इसे ट्रिगर करता है। तो 17 प्रेरक खंडों में से 13 अध्याय 10-22 में चेतावनियों में हैं, 17 में से 13 इन प्रेरक खंडों में चेतावनियों में हैं। और अध्याय 13 श्लोक 14 कहता है कि बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का सोता है। यह कोई चेतावनी नहीं है, बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का झरना है। यह आपको किसी भी तरह से चेतावनी नहीं दे रहा है। यह किसी चीज पर रोक नहीं लगा रहा है। यह कुछ अनिवार्य नहीं है। यह आपको बस यह बता रहा है कि बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का झरना है। मृत्यु के उपहास से मुंह मोड़ना। तो इसका उद्देश्य यह है और यह एक मकसद खंड है, लेकिन इसमें कोई चेतावनी नहीं है। तो कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन मृत्यु के उपहास से दूर होने के लिए अभी भी एक मकसद खंड भी है, या क्यों किया इसलिए। और इसलिए यह एक ऐसा मामला है जहां कोई चेतावनी नहीं है। और नीतिवचन अध्याय 10-22 में 17 में से 4 में से 4 चेतावनी उद्देश्य प्रकार की संरचनाओं में नहीं है। तो बस पीछे जा रहे हैं और यहां विवरण के साथ एक तरह की तकनीकी बात है। अध्याय 10-22 में मकसद खंड लगभग 5.3% मकसद खंड हैं, 5.3%। वह बहुत छोटा है। और अध्याय 25-29 यह 12% है। तो यह अध्याय 25-29 में दोगुना से अधिक है। और ये ज्यादातर चरित्र परिणाम प्रकार की चीजें हैं। लेकिन फिर अध्याय 22-24 में जो अधिक निर्देशात्मक आधारित हैं, 75%, 77% या 78%, 78% और 77.5% प्रेरित हैं। यहां इन खंडों से स्पष्ट रूप से प्रेरित किया गया है। तो यह 5% से लेकर 78% तक बहुत बड़ा अंतर है। तो अध्याय 10 से 22 में वाक्य कहावतों में इनमें से बहुत कम स्पष्ट उद्देश्य खंड हैं। तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि ठीक है, अगर हमें केवल मिला है तो हमारे पास वहाँ मकसद वाले खंड नहीं हैं। तो क्या आप अध्याय 10 से 22 में कह रहे हैं कोई प्रेरणा नहीं है? और जवाब नहीं है। मकसद खंड हमेशा इसकी द्वारा ट्रिगर किया जाता है, क्योंकि मकसद खंड वह स्पष्ट व्याकरण नहीं है, लेकिन हमें जो करने की जरूरत है वह व्याकरण के तहत गहरी संरचना को देखना है। और इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ वह गहरी संरचना पद्धति में उतरने के तरीकों का प्रस्ताव करना है, ताकि हम अध्याय 10 से 22 में उद्देश्यों को अलग कर सकें। तो कुछ डुप्लीकेट नीतिवचन में चेतावनियों और वाक्यों के बीच स्पष्ट संबंध, जहाँ एक है एक चेतावनी के अंतर्गत बनता है और दूसरा एक वाक्य में होता है। तो यह वह जगह है जहां आपको एक चेतावनी और एक प्रेरक उपवाक्य मिलता है, और बहुत ही समान अवधारणा केवल एक वाक्य में बिना किसी चेतावनी और बिना किसी प्रेरणा उपवाक्य के पाई जाती है, लेकिन यह अभी भी प्रेरक है। इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन 22:22 और 23 में कहा गया है, किसी गरीब को इसलिए मत लूटो क्योंकि वह गरीब है, और नहीं किसी दीन को फाटक में कुचल दो। तो यह तुम्हें दो निषेधात्मक निषेध बता रहा है, तुम गरीबों को मत लूटो और तुम दीन दुखियों को मत कुचलो। गरीबों को मत लूटो, पीड़ितों को मत कुचलो, यह एक चेतावनी है। ऐसा मत करो यह निषेध करता है कि पद 23 के लिए की के लिए प्रभु उनके मामले की पैरवी करेंगे। तो आप इन गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भगवान उनके मामले की पैरवी करने वाले वकील बनने जा रहे हैं। ठीक है। और उन लोगों की जान लूटो जिन्होंने उन्हें लूटा। तो यदि आप चाहें तो भगवान इसका समाधान करेंगे। और इसलिए आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप ऐसा नहीं करना चाहते। ठीक है। तो आपको एक सलाह है, गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो या उन्हें चोट मत पहुंचाओ, पीड़ितों को मत कुचलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका हिसाब चुकाता है। तो के लिए और फिर एक मकसद खंड, तो एक चेतावनी और एक प्रेरक उपवाक्य अध्याय 22:23, नीतिवचन अध्याय 14:31 में एक वाक्य में इसी तरह का विचार पाया गया है। नीतिवचन 14:31 कहता है, जो गरीब आदमी पर अत्याचार करता है वह अपने निर्माता का अपमान करता है, उसका निर्माता भगवान है। ठीक है। परंतु जो जरूरतमंदों के प्रति उदार होता है वह उसका आदर करता है। और इसलिए आपको यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज मिली है। जैसा कि हमने पहले सुना है, जो कोई गरीब आदमी पर अत्याचार करता है या दीन दुखियों को कुचलता है वह अपने निर्माता का अपमान करता है। तुम भगवान का अपमान करते हो, तुम संकट में हो। ठीक है। आप ऐसा नहीं करना चाहते, और इसलिए वहां एक मकसद है, लेकिन वहां कोई की उपवाक्य नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि यह सिर्फ इतना कहता है कि आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, आप गरीबों पर अत्याचार करते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि भगवान उसका निर्माता है। इसलिए ऐसा कोई स्पष्ट व्याकरण नहीं है जो इस उद्देश्य खंड को ट्रिगर करता हो, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट रूप से प्रेरक है। नीतिवचन में कई वाक्य कहावतें केवल अनुभवजन्य टिप्पणियों से आगे बढ़कर प्रेरक निर्देशात्मक होती हैं। इस प्रकार किसी को स्पष्ट व्याकरण और सथी व्याकरण से परे जाना चाहिए और अंतर्निहित गहरी संरचना में उतरना चाहिए। नीतिवचन 10 से 15 वाक्य कहावतों में शायद ही कभी स्पष्ट उद्देश्य उपवाक्य होते हैं। हमने उस पर गौर किया है। ठीक है। इसलिए अध्याय 10 से 15 जिन्हें हम देख रहे हैं उनमें शायद ही कभी ये स्पष्ट की प्लस मकसद खंड होता है। इसमें वे संरचनाएं नहीं हैं जो व्याकरणिक रूप से इतनी स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं। तो फिर हम वाक्य में कही गई बातों को श्रोता को प्रेरित करने के तरीके को कैसे अलग कर सकते हैं? हमें सही व्याकरण विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें एक की या पेन या उन चीजों से ट्रिगर होने वाली चीज की जरूरत है जो मकसद खंड को ट्रिगर करती है, बल्कि एक गहरी संरचना की जरूरत है जो गहरे उद्देश्यों में शामिल हो जाती है। निम्नलिखित एक गहन संरचना पद्धति का विकास है, और इसलिए मैं यहाँ आगे जो कर रहा हूँ वह नीतिवचन अध्याय 10 से 15 में मकसद की गहरी संरचना को प्राप्त करने के लिए एक पद्धति विकसित कर रहा है, जिसमें इनमें से बहुत से मकसद खंड बिल्कुल भी नहीं हैं। तो कार्यप्रणाली क्या है? ठीक है, हम अध्याय 10 से 15 में वाक्य कहावतों को तोड़ने जा रहे हैं। हम उन्हें विषय और टिप्पणी में विभाजित करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए आइए नीतिवचन 10.1 अध्याय 10 से 15 की पहली कविता का उपयोग करें। एक बुद्धिमान पुत्र विषय एक पिता को खुशी देता है, एक पिता को खुशी देता है। एक बुद्धिमान पुत्र लाता है और फिर वह विषय है एक बुद्धिमान पुत्र। क्या टिप्पणी है? एक पिता के लिए खुशी लाता है। अगली पंक्ति एक मूर्ख पुत्र और एक मूर्ख पुत्र, पंक्ति बी 10.1b का विषय है। और फिर उसकी माँ को किस बात का दुहक है? टिप्पणी, तो विषय है एक बुद्धिमान पुत्र और एक मूर्ख पुत्र, और टिप्पणियां इस प्रकार हैं: एक बुद्धिमान पुत्र एक पिता के लिए खुशी लाता है, मूर्ख पुत्र अपनी माँ के लिए दुखदायी होता है। तो यह टिप्पणी की गई है। और फिर हम यहाँ इस तरह की सकारात्मक और नकारात्मक बातें जोड़ने जा रहे हैं, आप जानते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और यह हमारे प्रेरक सिद्धांतों के साथ फिट होगा कि जिसे वे नकारात्मक कहते हैं वह परिहार होगा। जब आप किसी चीज से बचने के लिए प्रेरित होते हैं तो आप अपना हाथ गर्म स्टोव पर रख देते हैं, आप जानते हैं, आप हैं, आप अपना हाथ स्टोव से हटाने के लिए प्रेरित होते हैं, अपना हाथ जलने देते हैं। और इसलिए वहाँ एक त्वरित मकसद है जो निराशाजनक या निषेधात्मक है, बस एक नकारात्मक नकारात्मक प्रेरणा है। ठीक है, गर्म स्टोव को न छुएं। ठीक है, और फिर वहाँ सकारात्मक है, तो यह है परहेज, परहेज, इसे छूने से परहेज। और फिर वहाँ आकर्षण है, और आकर्षण वह चीज है जिसकी ओर आप आकर्षित होने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो एक बुद्धिमान पुत्र, एक बुद्धिमान पुत्र, यह एक प्लस है। ठीक है, वह यह है कि वह इस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, एक बुद्धिमान बेटे के लिए छात्र एक प्लस है। यह मूलतः चरित्र है, और आइए इसे भी वहां डाल दें। एक बुद्धिमान पुत्र व्यक्ति का चरित्र बता रहा है और उसके आगे प्लस चिन्ह लगा रहा है, चरित्र सकारात्मक, एक बुद्धिमान पुत्र और फिर परिणाम या परिणाम। तो हमें टिप्पणी में चरित्र, परिणाम, चरित्र मिला है। खैर, सबसे पहले विषय, विषय सकारात्मक है, एक बुद्धिमान पुत्र और टिप्पणी भी सकारात्मक है, चरित्र परिणाम और परिणाम प्लस है। ठीक है, एक पिता के लिए खुशी लाता है। दूसरी पंक्ति मूर्ख पुत्र, यहां हमारे पास फिर से चरित्र है, लेकिन इस बार यह नकारात्मक है, चरित्र फिर नकारात्मक और फिर परिणाम, लेकिन इस बार परिणाम सकारात्मक नहीं है, उसके पिता के लिए खुशी है बल्कि उसकी माँ के लिए दुःख है, वह नकारात्मक है। तो पहला है चरित्र प्लस बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए खुशी लाता है, परिणाम प्लस मूर्ख पुत्र चरित्र नकारात्मक होता है, माँ के लिए दुःख परिणाम नकारात्मक होता है। तो यह चरित्र प्लस परिणाम प्लस कैरेक्टर माइनस परिणाम माइनस है, ठीक है। और इस प्रकार हम यहाँ गहरी संरचना तक पहुँच रहे हैं। तो परिणाम आपको प्रेरणा बता रहा है, अपने पिता को खुश करने के लिए ऐसा करें। मूर्ख मत बनो बेटा, क्योंकि इससे तुम्हारी माँ को ठेस पहुँचेगी। तो इस तरह हमें अधिक गहन संरचना वाले तरीके से प्रेरणा मिल रही है। कार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अध्याय 11 श्लोक 15 विषय में, विषय वह है जो दूसरे की सुरक्षा करता है। तो यह एक कृत्य है जो नकारात्मक है। सुरक्षा मत लगाओ, मत करो, लोगों को पैसा उधार मत दो, तुम्हें पता है, बस बेतरतीब ढंग से। जो कोई अन्य टिप्पणी के लिए सुरक्षा रखता है, उसे निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी के नकारात्मक कार्य, नकारात्मक परिणाम या नकारात्मक कार्य के लिए सुरक्षा न रखें। सुरक्षा न लगाएं, क्योंकि आपको नुकसान होगा नकारात्मक परिणाम। जो कोई भी हाथ मारने और गिरवी रखने से इनकार करता है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो आप जानते हैं वह बाहर जाता है और फिजूल खर्ची करता है। आप जानते हैं लोगों को उधार देना और इस तरह की चीजें। जो कोई भी हाथ मारने से इनकार करता है वह एक सकारात्मक कार्य है। उसने मना कर दिया, वह ऐसा नहीं करेगा, यह सुरक्षित सकारात्मक परिणाम है। इसलिए सकारात्मक कार्य के परिणाम सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक कार्य के परिणाम नकारात्मक होते हैं। और इसलिए हम वहां जाते हैं। अब हम एक तरह से गहरी संरचना में उतर रहे हैं। और इसलिए फिर इनमें से 8 गहरी संरचनाएं हैं, और यह एक तरह से गुजरने की इच्छा रखती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं प्रत्येक का एक उदाहरण दूंगा। इसलिए जैसा कि हमने अध्याय 10 से 15 के साथ काम किया और आगे बढ़े, हमें पता चला कि मूल रूप से इन गहरी संरचनाओं की 8 श्रेणियां हैं। एक है, जैसा कि हमने पहले कहा, चरित्र परिणाम। चरित्र परिणाम एक सकारात्मक चरित्र हो सकता है, सकारात्मक परिणाम यह एक नकारात्मक चरित्र हो सकता है, नकारात्मक परिणाम लेकिन सकारात्मक चरित्र परिणाम वह संबंध। इस प्रकार की प्रेरणा 152 प्रकार की होती है, जहां चरित्र एक तरह का होता है और परिणाम उसी का परिणाम होता है। इनकी संख्या 152 है। और इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 10 श्लोक 2b, नीतिवचन 10:2b में यह कहा गया है, लेकिन धार्मिकता सकारात्मक चरित्र, धार्मिकता मृत्यु से मुक्ति दिलाती है, सकारात्मक परिणाम के रूप में मृत्यु से मुक्ति दिलाती है। सकारात्मक चरित्र धार्मिकता मुक्ति दिलाती है मृत्यु से, सकारात्मक परिणाम चरित्र परिणाम। अध्याय 10 से 15 तक उनमें से 152 हैं। अब चरित्र अभिनय, चरित्र अधिनियम। बुद्धिमान लोग ज्ञान को छिपाए रखते हैं। बुद्धिमान वह एक चरित्र है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह क्या करता है या वह करती है? ज्ञान जमा करो। तो बुद्धिमान लोग ज्ञान को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चरित्रवान अभिनय करो। इसलिए यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, आप ज्ञान जमा करने जा रहे हैं, तो वह चरित्र कार्य है। और नीतिवचन अध्याय 10 और उसके बाद में उनमें से 70 हैं। अथ वह वर्ण परिणाम 152 है। चरित्र कर्म 70 है, उनमें से लगभग आधा है। चरित्र मूल्यांकन, यहां एक चरित्र मूल्यांकन है। धर्मी की जीभ उत्तम चांदी है। तो यहां आपको चरित्र मिला, धर्मी की जीभ चरित्र, धर्मी की जीभ मूल्यांकन। मूल्यांकन पसंद की चांदी है और यह आपको दिखाता है आप चाहते हैं, मूल रूप से आप धर्मी लोगों की जीभ को महत्व देना चाहते हैं, तो वह धर्मियों की जीभ है। ठीक है, यह पसंद की चांदी की तरह है और इसलिए चरित्र मूल्यांकन। तो हमने 152 बार चरित्र प्रणाम किया, यह बहुत बड़ा है। चरित्रकार यह चरित्र इसी प्रकार की क्रिया करता है, प्रेरित करता है। और फिर चरित्र मूल्यांकन, आप एक धर्मी जीभ रखना चाहते हैं क्योंकि यह शुद्ध चांदी की तरह है। अब हमारे पास कृत्यों का परिणाम भी है और कृत्यों का परिणाम वही होगा जो निर्देश पर ध्यान देगा। यही कृत्य है। जो कोई निर्देश को मानता है वह एक कार्य है, वह जीवन के मार्ग पर है। तो यह आपको इसके पीछे की प्रेरणा का एक हिस्सा बताता है। तुम जीवन पथ पर चलना चाहते हो, अच्छे कर्म करना चाहते हो। ठीक है, कार्य का परिणाम जो कोई भी निर्देश पर ध्यान देता है, यदि आप निर्देश पर ध्यान देते हैं तो आप जीवन के मार्ग पर हैं। तो यह कार्य परिणाम है। इस खंड में उनमें से लगभग 63 हैं। वैसे चरित्र मूल्यांकन वे केवल 16 थे। वस्तु परिणाम, मद परिणाम उसके मुंह के फल से होगा। एक आदमी वह खाता है जो अच्छा है या एक व्यक्ति वह खाता है जो अच्छा है। तो मुंह के फल से एक व्यक्ति वही खाता है जो अच्छा है। ठीक है, तो यहां आपके पास एक आइटम है और फिर परिणाम है। किसी व्यक्ति के मुंह का फल, फिर मनुष्य वही खाता है जो अच्छा है। और वह नीतिवचन अध्याय 10 पद 15 या मुझे क्षमा करें नीतिवचन 13 पद 2 में है। आइटम मूल्यांकन, तो आपके पास आइटम परिणाम मुंह का फल है, एक व्यक्ति वही खाता है जो अच्छा है। वस्तु मूल्यांकन, धनवान का धन एक दृढ़ नगर है। यह सकारात्मक है। धनवान का धन एक दृढ़ नगर है, तो यह एक सकारात्मक वस्तु है, सकारात्मक मूल्यांकन है। फिर कार्य मूल्यांकन है। कार्य मूल्यांकन वही होगा जो अनुशासन से प्रेम करेगा, ज्ञान से प्रेम करेगा। जो व्यक्ति अनुशासन, आचरण और फिर मूल्यांकन को पसंद करता है वह ज्ञान को पसंद करता है। और फिर अंतः दिखावट और वास्तविकता आती है। उनमें से केवल 13 कार्य मूल्यांकन हैं। और फिर वहां उपस्थिति वास्तविकता है। इनमें से केवल 4 हैं। एक नीतिवचन 13:07 कोई अमीर होने का दिखावा करता है फिर भी वह कुछ भी नहीं है। दूसरा गरीब होने का दिखावा करता है फिर भी उसके पास बहुत धन है। और इसलिए मूलतः दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है। दिखावा और हकीकत दो अलग चीजें हो सकती हैं। और इसलिए वे चीजों की कुछ गहरी श्रेणियां हैं जो वहां मौजूद हैं। अब मैं जो करना चाहता हूं वह बस यहां कुछ नोट करना है। कोच और वॉन राड और कई इनमें से कुछ पुराने नियम के विद्वान, उन्होंने मूल रूप से कहा कि लौकिक वाक्य साहित्य का मूल कार्य परिणाम है। कार्य परिणाम एक गहरी संरचना है जो कई कहावतों कार्य परिणाम को रेखांकित करती है। और जबकि यह सच है उनमें से केवल 62 कार्य परिणाम हैं। वर्ण परिणाम के 152 थे। तो मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि कार्य परिणाम मूल नहीं है, क्योंकि कोच और वॉन राड इनमें से कुछ बड़े खिलाड़ी सभी कह रहे हैं कि कार्य परिणाम नीतिवचन की अधिकांश पुस्तक का मूल है। और मैं कह रहा हूं नहीं, इसे दोगुना करें, दोगुने से भी अधिक यह चरित्र परिणाम है। इसलिए कार्य परिणाम की तुलना में चरित्र परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब वे दोनों वहाँ हैं, और इसलिए मैं कार्य परिणाम को कम नहीं करना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि यह मामूली बात है। नहीं, यह नहीं, यह 62 में है। लेकिन दूसरा चरित्र परिणाम 152 है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जोर देने की जरूरत है। मैं जो कह रहा हूँ, नीतिवचन में जोर आवश्यक रूप से विशेष कृत्यों पर नहीं है, यह उन चीजों पर है, लेकिन यह चरित्र परिणामों पर अधिक है। तो फिर बुद्धिमान युवा लोगों के लिए चरित्र या कार्य को परिणाम से जोड़ने का महत्व, एक युवा व्यक्ति को क्या बुद्धिमान बनाता है? वे अपने कृत्यों और अपने चरित्र और उसके बाद होने वाले परिणामों के बीच संबंध देख सकते हैं। अब हमारी संस्कृति में समस्या क्या है? हमारी संस्कृति में ऐसा तरीका है कि कार्य या चरित्र कहना वास्तव में मायने नहीं रखता, क्योंकि वैसे भी सब कुछ वैसा ही होता है। हर किसी को एक ट्रॉफी मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल होते हैं या आप ऐसे काम करते हैं जो आपके चरित्र के लिए सकारात्मक तरीके से हों। हर किसी को एक ट्रॉफी मिलती है, और ऐसा करने से सकारात्मक कार्य और सकारात्मक चरित्र हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति मूल रूप से नैतिक पतन का सामना कर रही है, मुख्यतः क्योंकि हमने ज्ञान के मूल तत्व को कमजोर कर दिया है कि चरित्र और परिणाम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं और कार्य और परिणाम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। हमारी संस्कृति में आप कार्य करते हैं और आप कुछ बहुत बुरी चीजें कर सकते हैं। मैंने अभी न्यूयॉर्क शहर में मैकडॉनल्ड्स में एक आदमी को कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा। 3 घंटे के भीतर उसे रिहा कर दिया गया। वह आदमी वहां चीजों को पीट रहा था और लोगों को इस कुल्हाड़ी से आतंकित कर रहा था। मेरा मतलब है चीजों के पीछे जाना, चीजों को खत्म करना। और 3 घंटे के भीतर वह आदमी वापस सड़क पर आ गया। और इसलिए आप कहते हैं, एक मिनट रुकें, उसने ये बहुत बुरे काम किए और फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। तो वह मूल रूप से बाहर जाता है और इसे फिर से करता है। कोई परिणाम नहीं है। आप अपने आप को किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि कार्य परिणामों से जुड़े होते हैं। चरित्र और भी अधिक। चरित्र जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यही चीज एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाती है। एक बुद्धिमान बच्चा अपने कार्यों और अपने चरित्र और उसके बाद होने वाले परिणामों के बीच यह संबंध बनाने में सक्षम होता है। इसलिए बुद्धिमान बच्चे इस प्रकार की बातें जानते हैं। अब मैं एक उदाहरण का उपयोग करने जा रहा हूं, बस एक कहानी बताऊंगा और हम बाद में इस उदाहरण पर वापस आएंगे। जब मैं छोटा था, मैं नियाग्रा नदी में बड़ा हुआ। मैं ग्रैंड आइलैंड नामक स्थान पर रहता था। एरी झील महान झीलों में से एक नियाग्रा फॉल्स के ऊपर जाने से पहले नीचे आती है और इस द्वीप के चारों ओर विभाजित हो जाती है। तो नियाग्रा फॉल्स हर कोई आता है और नियाग्रा फॉल्स देखता है, लेकिन पानी एरी झील से निकलता है, ग्रैंड आइलैंड के चारों ओर जाता है जहां मैं रहता था, और फिर फॉल्स के ऊपर। वहां एक पुल है जो ग्रैंड आइलैंड साउथ ब्रिज पर आता है और नॉर्थ ब्रिज उस रास्ते से चला जाता है। खैर, नदी थी, मैं हर जगह नियाग्रा नदी में तैरते हुए बड़ा हुआ हूं। और इसलिए जब हम छोटे थे, मैं और मेरा भाई और रेम्स, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हम पुल के नीचे मेहराब से कूद जाते थे। मुझे पूरा यकीन है कि यह गैरकानूनी था, लेकिन इसे करने में हमें बहुत मजा आया। तो किस चीज ने हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? तो हम बाहर जाएंगे और आप पुल के नीचे एक मेहराब से कूदेंगे आप पानी में कूदेंगे और यह वास्तव में मजेदार था। आप जो चाहें ऊंचाई चुन सकते हैं। यदि आप 20-30 फीट की छलांग लगाना चाहते हैं तो आप अच्छे हैं। यदि आप 80 फुट करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन 80 फुट वाले के साथ समस्या यह है कि वह नदी के बीच में है और आपको तैरकर किनारे तक आना होगा। फिर क्या होता है कि जब आप 20 या 30 फीट की छलांग लगाते हैं तो आप पानी से टकराते हैं, आपको उठना पड़ता है और वास्तव में तेजी से तैरना पड़ता है क्योंकि धारा स्पष्ट रूप से नियाग्रा फॉल्स की ओर जा रही है और इसलिए पानी नियाग्रा फॉल्स की ओर नीचे जा रहा है। आपको ढेर पर वापस चढ़ने के लिए उठना होगा और धारा की तुलना में तेज तैरना होगा ताकि आप वापस ऊपर चढ़ सकें और फिर दूसरी छलांग लगा सकें। लेकिन आपको पानी से टकराने, उठने, जितनी तेजी से हो सके तैरने, ढेर के सामने पहुंचने और फिर से ऊपर चढ़ने में सक्षम होना था। तो हमारा एक बच्चा था जो बहुत अच्छा नहीं था। उसे ठीक से तैरना नहीं आता था। तो वह पानी में कूदता है और फिर वह ऊपर आता है और ऐसा लगता है वाह, वह चारों ओर देख रहा है। जब तक वह इधर उधर देखता है, धारा उसे नीचे की ओर ले जा रही होती है और इस आदमी को किनारे तक तैरना पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे वह और छलांग नहीं लगा सकता है और हर कोई बस उसकी ओर हाथ हिलाता है। अरे यार, फिर से ढेर पर चढ़ने के लिए तुम तेजी से कैसे नहीं तैरे? ठीक है, तो वह अपना मौका और सामान चूक गया। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने ऐसा किया था। हम ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुए? खैर युवाओं, आप मजे करो। और इसलिए हम प्रेरित हुए क्योंकि हवा में 20-30 फीट की छलांग लगाना और पानी में उतरना मजेदार था और फिर वास्तव में तेजी से तैरने और फिर से ढेर के सामने आने की चुनौती थी। यह मजेदार था, इसलिए हमने इसे उन कारणों से किया। लेकिन हम ऐसा करने के लिए प्रेरित हुए। हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इसके कुछ निश्चित परिणाम होंगे। और इसलिए जब उस बच्चे ने हमला किया और वह सोचने लगा, ओह मैं आगे क्या करूं? उसे इस बात का एहसास नहीं था कि आपको तैरना है, ऊपर आना है और आपको तुरंत तैरना शुरू करना होगा, अन्यथा आप नीचे की ओर होंगे। और इसलिए उसे किनारे तक तैरना पड़ा। इसलिए उसके लिए परिणाम भुगतने पड़े और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। मेरा मतलब है, उसे तैरकर किनारे तक आना था। और इसलिए इसके परिणाम भी हुए। या तो आपने इसे सही किया और वापस आ गए, या आपने इसे गलत किया और आपको किनारे तक तैरना पड़ा। तो परिणाम है, ठीक है, कार्य करें और परिणाम। अब प्रेरणा और विरोधाभासी समानता क्या दिलचस्प है। और पॉल स्टोल की बात इस पर भी ध्यान देती है। एक वादा सिद्धांत या अपेक्षित है, मुझे नीतिवचन में निराशाजनक वैलेंस की तुलना में उम्मीद बेहतर पसंद है। और यह मूल रूप से दृष्टिकोण या आकर्षण और बचाव के प्रेरक सिद्धांत के साथ समन्वित है। तो आकर्षण और परहेज दो उद्देश्य हैं। इसे आकर्षित करने का आपका मकसद और इससे बचने का मकसद। आकर्षण प्रेरणा और परिहार प्रेरणा। सकारात्मक आकर्षण नकारात्मक से बचें। ठीक है, तो यह वहां एक तरह का बाइनरी है। ज्ञान साहित्य के निर्माण में संतों को विरोधी समानता के प्रति इतनी प्राथमिकता क्यों दिखानी चाहिए? अध्याय 10 से 15 में 90% नीतिवचन विरोधाभासी समानता है। अब विपरीत समानता क्या है? पुराने दिनों में हम सिखाते थे कि तीन प्रकार की समानता है। आचार, आपके पास मूल रूप से पर्यायवाची समानता थी, जहां आपके पास दो पंक्तियां थीं, उन्हें बाइकोलन कहा जाता है। बाई का अर्थ है दो या दो पंक्तियां, बाइकोलन कविता की दो पंक्तियां। और वे दो पंक्तियां जो दूसरे पर्यायवाची समानता से संबंधित थीं, ए से मेल खाता है, बी से मेल खाता है, सी से मेल खाता है, या वे विरोधाभासी हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही दिशा में जाने और समानार्थी समानता होने के बजाय यह इसे फ्लिप करता है और कहता है यह सच है लेकिन, और फिर दूसरा इसे वापस ले लेता है और विरोधाभासी हो जाता है। तो दोनों के बीच विरोधाभास है। और फिर दूसरा सिंथेटिक था, वह तब था जब यह काम नहीं करता था। और फिर इसे देखने के कुछ नए तरीके सामने आए हैं, कुगेल और मैं उनसे भी अच्छी तरह परिचित हूँ। और हिब्रू कविता का एक पूरा क्षेत्र है जो मुझे पसंद है, लेकिन यह इसके बारे में बात करने की जगह नहीं है, सिवाय इसके कि शायद इसे यहाँ विरोधाभासी समानता में पेश किया जाए। तो आपके पास विरोधाभासी समानता है। आइए उदाहरण के लिए एक बुद्धिमान पुत्र को लें। तो वह हमारा ए होगा और वह एक सकारात्मक एक बुद्धिमान पुत्र सकारात्मक खुशी देता है, बी वह वहाँ क्रिया है खुशी देता है, बी प्लस वह प्लस है एक पिता के लिए, सी एक पिता के लिए। तो एक बुद्धिमान बेटा ए एक पिता को खुशी देता है, बी सी, वे सभी सकारात्मक हैं। अब अगली पंक्ति क्या कहें? अगली पंक्ति कहती है एक मूर्ख पुत्र, अब यह एक बुद्धिमान पुत्र एक मूर्ख पुत्र के बिल्कुल विपरीत है। तो एक मूर्ख बेटा वह नकारात्मक है दुख देता है, वह नकारात्मक भी है दुख देता है, इसके विपरीत खुशी देता है। यह उसके पिता को खुशी देने वाला है, उसकी माँ को दुख देने वाला है, यह एक नकारात्मक बात है और उसकी माँ के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि माँ और पिता को एक दूसरे के विपरीत माना जा सकता है, वे पूरक हैं माता और पिता, आप कह सकते हैं माता पिता। लेकिन वैसे भी कोई पिता है कोई माँ है तो यह एक तरह से पूरक होने समावेशी होने पिता और माँ के माता पिता होने की बात करता है। तो यह एक विरोधाभास होगा। बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए आनंद का कारण होता है और मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुख का कारण होता है। ए बी सी सकारात्मक ए नकारात्मक बी नकारात्मक सी नकारात्मक, या ए बी सी नकारात्मक नहीं है, वे पूरक हैं पिता और माता माता पिता। तो मूल रूप से यह बताता है कि बच्चों का चरित्र माता पिता को कैसे प्रभावित करता है। क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अगर किसी के बच्चे हैं, वैसे भी आपको एहसास है कि बच्चों के साथ जो होता है उसका माता पिता पर खुशी और गम दोनों पर असर पड़ता है। अब भजन 1:6:1 ज्ञान स्तोत्र है। मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता कि ज्ञान स्तोत्र क्या है, लेकिन यह भजन 1:06 भजन 1 है। धन्य है वह व्यक्ति जो परिषद के मार्ग पर चलता है और अध्याय 1 पर चलता है। और फिर अंतिम श्लोक यह कहता है क्योंकि प्रभु जानता है, निःसंदेह प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है। तो यह भगवान जानता है ए धर्मियों का मार्ग, बी लेकिन दुष्टों का मार्ग भी नष्ट हो जाएगा ए। तो अब आपको ए सकारात्मक बी नकारात्मक बी मिल गया है। नकारात्मक ए, तो यह ए बी बी ए है। जैसा कि हमने दूसरे सत्र में सीखा था, इसे चियास्म कहा जाता है क्योंकि यह ग्रीक शी या ची जैसा दिखता है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं यह एक्स जैसा दिखता है। तो ए बी फिर बी ए, और यदि आप ए और बी को जोड़ते हैं तो यह एक की या एक्स चीज बनाता है। वैसे भी मुद्दा यह है कि यह एक ज्ञान स्तोत्र है और यहाँ एक और विरोधाभासी समानता है, दो पंक्तियां जो समानांतर हैं, जो विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अत प्रतिविरोधी समानता एक योगात्मक अर्थ दृष्टिकोण, अच्छे दृष्टिकोण या आकर्षण और परिहार या दूसरे रास्ते पर जाकर वाक्यों की प्रेरक शक्ति को दोगुना करने के लिए एक आदर्श मनोवैज्ञानिक संरचना प्रदान करती है। अब जो दिलचस्प है वह यह है कि यदि आप इसे मार्क्स नीड ने जो किया है उससे जोड़ते हैं, तो वह नोट करता है कि नीतिवचन की पुस्तक के बाहर पुराने नियम में नीतिवचन हैं जो अभी अभी आते हैं, यहाँ और वहाँ यादृच्छिक नीतिवचन हैं, और यह कहता है कि यह एक है कहावत और फिर यह इसे उद्धृत करता है, लेकिन वे कहावतें एक पंक्ति वाली हैं। वे समानतावाद विपरीत समानतावाद में नहीं हैं। बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए आनंद का कारण होता है और मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुख का कारण होता है। वे एक पंक्ति वाले हैं। वे एक लाइनर हैं, दो लाइनर नहीं। और इसलिए उदाहरण के लिए डेल ने बाइबल ज्ञान साहित्य पर अपने हालिया अध्ययन में पृष्ठ 85 पर एक शानदार पुस्तक में इसे नोट किया है। मूल रूप से डेविड शाउल को बख्श रहा है। वह गुफा में चला गया और डेविड ने उसे बचा लिया, उसे मारकर सामान नहीं दिया। और यह एक शमूएल 24:13 में गुफा से बाहर आता है और फिर यह कहता है, जैसा कि पूर्वजों की कहावत कहती है उद्धरण, और अब यहाँ एक कहावत है। क्या यह विरोधाभासी होगा? हम नीतिवचन की पुस्तक को देखते हैं, उनमें से अधिकतर विरोधी हैं। वे दो रेखाएं हैं जो विपरीत दिशाओं में जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यह एक लाइनर है। दुष्ट से दुष्टता ही निकलती है, इतना ही, दुष्ट से दुष्टता ही निकलती है। छोटा, नमकीन और यह पूर्वजों द्वारा जाना जाता है, यह पारंपरिक है। और इसलिए यहाँ आप दुष्टों से बाहर निकल आए हैं और दुष्टता आती है, एक लाइन। या यदि आप न्यायाधीश अध्याय 8:21 गिदोन पर जाते हैं, तो आप न्यायाधीश गिदोन के साथ यह देखते हैं, एक आदमी के रूप में उसकी ताकत भी है। कहावत है कि जैसा आदमी वैसी ही उसकी ताकत। बूम, इतना ही, कोई दो पंक्तियां नहीं हैं, यह एक पंक्ति है। इसलिए शास्त्रियों ने इन कहावतों में एक दूसरी पंक्ति जोड़ दी होगी और फिर उन्हें नीतिवचन की पुस्तक में डाल दिया होगा, जो अधिकतर यही है। यह काव्यात्मक है, यह काव्यात्मक है। यह सिर्फ एक पंक्ति की कहावत नहीं है, यह काव्यात्मक है। और इसलिए दूसरी पंक्ति यह है कि आपको यह विरोधाभासी समानता चल रही है। और जैसा कि हमने कहा, लगभग 70% कहावतें इस आकर्षण परिहार प्रकार की विरोधी संरचना हैं। और इसलिए इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नीतिवचन 10 से 15 में इतनी सारी विरोधाभासी समानताएं क्यों हैं। ऐसा इसलिए है, संभवतः इसी प्रेरणा के कारण। प्रेरणा ही आकर्षण है। क्यों एक बेटा एक पिता के लिए खुशी लाता है? और परहेज, एक मूर्ख बेटे का अपनी माँ को दुहक। और इसलिए आप वास्तव में शक्ति को दोगुना कर देते हैं। उस बुद्धिमान पुत्र जैसा बनने का आकर्षण दोगुना हो जाता है। तो आप अपने पिता या अपने माता पिता के लिए खुशी लाते हैं, और फिर नकारात्मक रूप से आप जानते हैं, मूर्ख बेटा मत बनो क्योंकि तुम अपने माता पिता को चोट पहुंचाने जा रहे हो। तो प्रेरक अध्ययन फिर गतिविधि की शुरुआत, तीव्रता, दिशा, व्यवहार की दृढ़ता का भी अध्ययन करता है। यह सिर्फ सुख और दर्द की प्रेरणा से परे है, ठीक है, और गाड़ी चलाने और आदतों के लिए। आदतें, आप प्रेरित होते हैं और आप एक आदत विकसित कर लेते हैं और वह प्रेरणा बन जाती है। मूल्य और अनुभव, अपेक्षा, आपको प्रोत्साहन मिला। दूसरे शब्दों में आप एक निश्चित गतिविधि करते हैं। आपके पास एक प्रोत्साहन है। ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन क्या है? ठीक है। तो अगर कोई मुझसे कहता है, ठीक है, आप ग्रैंड आइलैंड ब्रिज से छलांग लगाने जा रहे हैं। मैं तुम्हें 80 फुट की ऊंचाई से कूदने के लिए $1 दूंगा। ठीक है। जब कोई बड़ा व्यक्ति वहां आएगा और मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मैं तुम्हें उससे बाहर निकलने के लिए $1 दूंगा। और आप कहते हैं $1। और मैं उसमें से छलांग लगाता हूं और मैं नियाग्रा नदी, नियाग्रा फॉल्स के बीच में हूं। मैं इसे वहां से देख सकता हूं। मैं वहां से झरने देख सकता हूं। मैं पानी से टकराता हूं और मैं ढेर के सामने वापस तैर नहीं सकता। मुझे नदी के बीच से किनारे तक तैरना है, जो लगभग आधा मील है। और फिर मुझे नीचे ले जाया जाएगा। करंट मुझे नीचे गिरा देगा। क्या यह ₹1 के लायक है? यह ₹1 के लायक नहीं है। मैं $1 के लिए उस चीज से दूर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर कोई मेरे पास आए और कहे, अरे लेब्रोन, मैं तुम्हें वहां से कूदने की चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। मैं उस पर गौर करूंगा और कहूंगा, हम्मा, प्रोत्साहन काफी बड़ा है। मैं वहां से कूद जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं तैरकर किनारे तक पहुंच सकता हूं। मैं वह $1,000,000 लूंगा और उससे कूद जाऊंगा। अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने सही मारा है और आपको तेजी से ऊपर आना होगा और जितनी तेजी से हो सके उस किनारे पर पहुंचना होगा ताकि आप उसे चूकना न चाहें और झरने की ओर नीचे न जाएं। लेकिन इसकी कीमत ₹1,00,000 होगी। मैं वह प्रयास करूंगा। अब और नहीं। शायद अब मैं बमुश्किल तैर पाता हूं। लेकिन वैसे भी जब आप बच्चे थे, तो प्रोत्साहन का आकार, आप अपने बच्चों को किस प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं? मेरा एक बच्चा जवान था और मैं यह सब कंप्यूटर संबंधी काम कर रहा था, और इसलिए मैं उस समय फोटोशॉप सीख रहा था। यह संभवतः 1990 के दशक की शुरुआत में था। तो मेरे पास एक बड़ी किताब थी। मुझे फोटोशॉप पर हमेशा ये 1000 पन्नों की किताबें मिलती हैं और फिर मैं किताब पढ़ता हूँ और फिर फोटोशॉप कर पाता हूँ। और इसलिए मेरे बेटे को कुछ चीजों में सचमुच दिलचस्पी थी। तो मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं आपको किताब पढ़ने के लिए ₹10 दूंगा। खैर, वह एक प्रकार का लालची छोटा बच्चा था और मैं जानता था कि ₹10 वह वापस आ जाता है। उन्होंने पूरी किताब पढ़ी और इसलिए अब वह फोटोशॉप का भी जादूगर है। और वास्तव में मुझे गेट लॉस्ट इन जेरूसलम नामक एक CD-ROM विकसित करने में मदद मिली, जिसे मैंने एक साथ रखा था, जहां आप जेरूसलम की सड़कों पर चल सकते थे। यह गूगल से पहले की बात है। तुम्हें पता है, अब आज यह स्ट्रीट व्यू है। हर कोई उसमें शामिल है। लेकिन ये उससे पहले की बात है। मैंने इसे 1990 के अंत में किया था। जैच ने मेरी मदद की क्योंकि वह फोटोशॉप जानता था, क्योंकि उसने किताबें और चीजें पढ़ी थीं। लेकिन अलग अलग बच्चे अलग अलग होते हैं। और इसलिए मेरा एक और बेटा हुआ। मैंने उसे किताब पढ़ने के लिए ₹10 दिए और इससे उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। उसे प्रेरित करने के लिए कुछ और भी आवश्यक था। इसलिए अलग अलग प्रोत्साहन अलग अलग बच्चों को प्रेरित करते हैं। और यह जानने के लिए कि किस प्रकार का प्रोत्साहन उसे प्रेरित करेगा, आपको बच्चे के चरित्र के बारे में जागरूक होना होगा। मेरे पिताजी यह जानते थे। जोंडरवन चार्ल्स स्पर्जन के उपदेशों के 22 खंड लेकर आए। उनमें से प्रत्येक लगभग 200 या 300 पृष्ठों का था और मेरे पिता ने यह चार्ल्स स्पर्जन सेट खरीदा। और जब मैं छोटा बच्चा था तो उन्होंने मुझसे कहा था और मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या चाहता था। मेरी पोतियां अब कुत्ता खरीदने के लिए पैसे बचा रही हैं और इसलिए उन्हें इस कुत्ते के लिए काम करना होगा और वे कुत्ते के लिए भुगतान करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे पिता ने चार्ल्स स्पर्जन के उपदेशों की प्रत्येक पुस्तक जो मैं पढ़ता था उसके लिए मुझसे 2 रुपए मांगे। सच तो यह है कि मैं बैठ गया और हर दिन एक किताब या हर दूसरे दिन एक किताब पढ़ रहा था और मैंने लगभग 1.5 महीने में चार्ल्स स्पर्जन के उपदेश के 22 खंड पढ़े। मैंने उन सभी को पढ़ा। मेरे बेचारे पिता टूट गए और उसने मुझे उन चीजों को पढ़ने के लिए 44 रुपए दिए। और वैसे मुझे लगता है कि जब मैं शायद 14 या 15 साल का था तब उन्होंने ऐसा किया और चार्ल्स स्पर्जन के उपदेश पढ़े, तो मुझे लगता है कि इसने ईश्वर के वचन को एक अनोखे तरीके से मेरे दिमाग में डाल दिया। मैं अब जो कर रहा हूँ उसकी शायद यही पृष्ठभूमि है। तो वैसे भी आप कभी नहीं जानते कि ये सभी चीजें कैसे काम करेंगी, लेकिन प्रोत्साहन, आपको प्रोत्साहन और उस तरह की चीजों के साथ काम करना होगा। अब नीतिवचन, जबकि इसमें प्रोत्साहन और सामान है, यह मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम से इनकार नहीं करता है और इसलिए कभी कभी नीतिवचन न केवल इन उच्च स्वर्गीय चीजों के बारे में बात करते हैं बल्कि केवल सामान्य भूख, निचले स्तर पर सामान्य भूख और अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं। लोगों को भूख लगती है। यहोवा धर्मी को भूखा नहीं रहने देता। यहोवा धर्मी को भूखा नहीं रहने देता। तुम्हें पता है, भूखे रहो, नेक बनो। यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं रहने देता, परंतु दुष्टों की लालसा को टाल देता है। फिर तुम देख सकते हो कि यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं रहने देता, परंतु वह दुष्टों की लालसा को विफल कर देता है। तो यह दो रेखाओं के बीच विरोधाभासी समानता है। तो भूख, हानि, हानि, नीतिवचन अध्याय 10 श्लोक 29, प्रभु का मार्ग निर्दोषों के लिए गढ़ है परंतु दुष्टों के लिए विनाश है। मुझे वह फिर से करने दो। नीतिवचन 10:29, प्रभु का मार्ग निर्दोषों के लिए गढ़ है परंतु दुष्टों के लिए विनाश है। और इसलिए आपको वहां नुकसान की यह बात समझाती है। आप कुकर्मी नहीं बनना चाहते क्योंकि तब वह आप जानते हैं आप वहां विनाश करने वाले हैं। मृत्यु एक और ऐसी चीज है जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 10 श्लोक 21 नीतिवचन 10:21, धर्मी के होठों से बहुतों का पोषण होता है। धर्मियों के वचन बहुतों का पोषण करते हैं। सकारात्मक, सकारात्मक। धर्मी के वचन बहुतों को भोजन देते हैं परंतु मूर्ख निर्बुद्धि के कारण मर जाते हैं। परंतु मूर्ख बुद्धि की कमी के कारण मर जाते हैं। आत्म मृत्यु प्रेरक है। तुम मरना नहीं चाहते। यह एक बहुत बड़ा प्रेरक है और इसलिए नीतिवचन उस पर जोर देता है। यह वहां प्रेरक चीजों के निचले स्तरों को नजरअंदाज नहीं करता है। तो नीतिवचन में इन प्रेरक स्रोतों का एक पूरा समूह है। जैसा कि हमने देखा, हमें व्यक्तिगत प्रेरणाएं, भूख, हानि, मृत्यु, सामाजिक सरोकार मिले हैं। दूसरे शब्दों में मित्रता और चरित्र परिणाम मित्रता को कैसे प्रभावित करते हैं। और नीतिवचन 14:20, कंगाल को उसका पड़ोसी भी अप्रिय जानता है। तो गरीबी एक तरह से नकारात्मक है। ठीक है, कहावतें गरीबी का महिमामंडन नहीं करती। ठीक है, गरीबी नापसंद है। गरीब को उसका पड़ोसी भी नापसंद करता है, लेकिन अमीर के बहुत सारे दोस्त होते हैं। और तुम कहते हो मुझे यह पसंद नहीं है। यह सच है क्योंकि मैं सिर्फ एक गरीब आदमी रहा हूँ, हालांकि मेरी कहानी शायद ही कभी बताई जाती है। और आप जानते हैं, लेकिन अमीर आदमी के कई दोस्त होते हैं। आप कहते हैं, आप जानते हैं, यह सही नहीं है। लेकिन फिर एक अन्य गीत के साथ उत्तर, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी यह है। और यदि कोई आसपास रहा हो तो तुम जानते हो कि उस बेचारे को उसका पड़ोसी भी नापसंद करता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के कई दोस्त होते हैं। सम्मान और शर्म श्रेणियों और सामाजिक सरोकारों का एक और बड़ा समूह है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अन्य लोगों से आशीर्वाद और शाप, आशीर्वाद और शाप, दूसरों के लिए परोपकारी चिंताएं, नीतिवचन इसे सामने रखते हैं। दूसरों के प्रति परोपकारी चिंता, धर्मियों के वचन बहुतों का पोषण करते हैं। नीतिवचन 10:21, नीतिवचन 10:21, धर्मियों के वचन बहुतों का पोषण करते हैं। और इसलिए आपको धर्मी होने और धर्मी होंठ रखने से लाभ होता है। परिणाम दूसरों के लिए परोपकारी चिंता है। धार्मिक प्रेरणाएं भी हैं, जैसा कि हमने कहा, जो कोई भी चमक में चलता है वह प्रभु से डरता है। प्रभु का भय एक प्रेरणा है, सकारात्मक एक धार्मिक प्रेरणा है। जो सीधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानता है, परंतु चाल चलन में वह टेढ़ा है और उसे तुच्छ जानता है। तो ठीक है, तो वहां विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। अब नीतिवचन में अंतिम प्रेरणा जीवन और मृत्यु है। और आप फिर से देख सकते हैं, जीवन सकारात्मक अर्थ में, मृत्यु नकारात्मक अर्थ में। तो आपको इस विपरीत संरचना के साथ दोगुनी प्रेरणा मिलती है। इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 8:34-36 में यह कहा गया है। नीतिवचन 8:34-36, धन्य है वह जो मेरी बात सुनता है। यहां बुद्धि बोल रही है, मैडम विजडम बोल रही हैं। धन्य है वह जो मेरी सुनता है, प्रतिदिन मेरे द्वारों पर दृष्टि रखता है और मेरे द्वारों के पास प्रतीक्षा करता है। क्योंकि जो कोई मुझे पाता है, मैडम विजडम, वह जीवन पाता है और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करता है, जीवन पाता है। ध्यान दें, वहां जीवन बहुत बड़ा है, प्रभु की कृपा पाता है। परंतु जो कोई मुझे ढूंढने में असफल होता है, वह अपने आप को हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। जो मुझसे बैर रखते हैं, वे सब मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो आपने नीतिवचन 8:34 और 36 में सूचीबद्ध उद्देश्यों में जीवन और मृत्यु को पाला है। अब संज्ञानात्मक प्रेरक कारक, संज्ञानात्मक प्रेरक कारक एक फार्मूला है। जब मैं छोटा था तब मैं भौतिकी का विषय था और वास्तव में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, और इसलिए मुझे सूत्र पसंद हैं। ठीक है, VIR और FMA। A का वर्ग और B का वर्ग बराबर C का वर्ग होता है। ये सभी चीजें जो आपको तब याद आती हैं जब आप स्पेनिश और अन्य भाषाओं को सीखने, अपने याद किए गए फॉर्मूलों से ऊब जाते हैं। मुझे माफ करें, वह बिल्कुल नासमझी है, लेकिन मैं उस समय एक तरह का मूर्ख था, शायद अब भी हूं। एक सूत्र है जो MS और फिर TD और फिर INS समय कहता है। ठीक है, तो MS गुना TD, और इसलिए MS सफलता के लिए प्रेरणा है, सफलता के लिए प्रेरणा, MS टाइम्स TD, और यह कार्य कठिनाई होगी, सफलता के लिए प्रेरणा, कार्य की कठिनाई और फिर प्रोत्साहन, INS। ठीक है, प्रोत्साहन, और आप उन्हें गुणा कर दें, और यह मूल रूप से वर्णन करता है और आप प्रेरक क्षमता और शक्ति और इस तरह की चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए, यदि सफलता के लिए आपकी प्रेरणा या असफलता के लिए प्रेरणा सफलता के लिए आपकी प्रेरणा से अधिक है, तो दूसरे शब्दों में आप सोचते हैं कि संभावनाएं हैं। इसलिए अगर मैं उस पुल से 80 फीट की ऊंचाई पर कूदता हूं और मुझे किनारे तक तैरना पड़ता है, तो मेरी सफलता की गारंटी नहीं है। यह एक लंबी तैराकी है। धारा तुम्हें नीचे ले जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर सकता था या नहीं। ठीक है। साथ ही 80 फीट पर मारक क्षमता। यह एक अच्छी छलांग है। ठीक है। और इसलिए विफलता के लिए प्रेरणा अधिक है। सफलता के लिए प्रेरणा कम है। आप संभवतः तब ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आप कहेंगे, नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। विफलता दर संभवतः मेरी सफलता दर से अधिक है। इसलिए मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है। लेकिन क्या होगा यदि आपकी सफलता दर आपकी विफलता दर से बड़ी हो? इसलिए जब आप 20 या 30 फीट की दूरी पर होते हैं, तो आप कूदते हैं, आप तैर सकते हैं, और आप जानते थे कि आप ऐसा कर सकते हैं। और इसलिए आप सोच रहे हैं कि सफलता यह है कि मैं वह कर सकता हूं, लेकिन तब विफलता दर कम होती है जब तक कि आप ऊपर नहीं आते और चारों ओर देखना शुरू नहीं करते, तब आप नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तरह तैर सकते हैं। और फिर इसके बारे में क्या, उन्होंने कार्य की कठिनाई पर भी कुछ अध्ययन किया है। अगर चीजों को बहुत आसान बना दिया जाए, तो इससे लोग जुड़ते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि यह मामूली बात है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत आसान है, मैं ऐसा प्रयास नहीं करने जा रहा क्योंकि यह स्पष्ट है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यह नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। ठीक है। इसलिए यदि कार्य की कठिनाई टीडी बहुत कम है, तो लोग इसे खारिज कर देते हैं। दूसरी ओर यदि कार्य की कठिनाई बहुत अधिक है, तो आप कहते हैं, मैं वह प्रयास नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है। तो पुल से कूदना, मान लीजिए मेहराब के ऊपर से, पुल के ऊपर से जहां यह लगभग 200 फीट ऊपर है, पानी में गलत तरीके से टकराने और सीमेंट की तरह बनने की संभावना है, और आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं ताकि आप ऐसा कर सकें, तैरकर किनारे तक न पहुंचें, यानी कार्य की कठिनाई बहुत बड़ी है, इसलिए आप ऐसा नहीं करना चाहते। और इसलिए कार्य कठिनाई, और उन्होंने जो देखा है वह यह है कि कार्य कठिनाई मध्य सीमा में होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह बहुत आसान नहीं हो सकता, इसे खारिज कर दिया जाता है। यह बहुत कठिन नहीं हो सकता, अन्यथा लोग इसे आजमाएंगे नहीं। यह बीच में होना चाहिए जहां उन्हें लगे कि वे यह कर सकते हैं, इसलिए वहां एक चुनौती है और मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ है। और फिर प्रोत्साहन। आपको क्या प्रोत्साहन मिला है? खैर, 20 या 30 फीट की ऊंचाई से कूदना बहुत मजेदार है। और फिर जितनी तेजी से आप कर सकते हैं तैरना, फिर से ऊपर चढ़ना और सामान, इसमें एक चुनौती है, यह मजेदार है, उस तरह का सामान। लेकिन हमारे साथ जो हुआ वह यह था कि मेरा दोस्त डेव रेम्स 20 या 30 फीट की ऊंचाई से कूद गया, और हमने पहले इस जगह पर बिल्कुल भी छलांग नहीं लगाई थी, और अचानक वह ऊपर आता है और पानी में खून बह रहा है, और हम कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं, और अचानक आपको पानी में खून दिखाई देता है। वैसे यह नियाग्रा नदी का ताजा पानी है। वहां कोई शार्क नहीं है। तो आप खून देखते हैं, आप कहते हैं, ठीक है, यह शार्क से संक्रमित नहीं है। और इसलिए यह पता चला कि जाहिरा तौर पर किसी ने पानी में एक पाइप फेंक दिया था और वह सीधे चिपक गया, और जब डेव रेम्स ने उसे मारा तो मूल रूप से पाइप ने उसके पैर को काट दिया और इसलिए उसका खून बहने लगा। वैसे भी वहां है, हर जगह खून बह रहा है। तो फिर सवाल करें, ठीक है, जब आपने खून ऊपर आते देखा तो क्या हम कूद पड़े? और उत्तर है नहीं। रक्त ने हमें बताया कि वहां एक संकेत है, वहां एक परिणाम था। हम वह परिणाम नहीं चाहते थे। मैं वहां कूदना नहीं चाहता और मैं उस चीज से भी टकराने जा रहा हूं। और इसलिए देव उस चीज तक तैर गया, ऊपर चढ़ गया और उसका पैर पूरी तरह से कट गया। मेरा मतलब है, बस इसे रेजर ब्लेड चाकू की तरह काट दिया और इसलिए हमें एहसास हुआ कि हमें वहां से निकलना होगा। आपके साथ ईमानदार होने के लिए, वह आखिरी बार था जब हम वहां से कूद गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहां कुछ ऐसा था जिसके बारे में हम नहीं जानते थे और आपको बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती थी। तो वैसे भी प्रेरणा और उस प्रकार की चीजें, और आप बुद्धिमान बच्चों और चीजों को बड़ा करना चाहते हैं। तो ज्ञान, यह दिलचस्प है। बुद्धि स्वयं को प्रस्तुत करती है और आप कहते हैं, क्या उसने स्वयं को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है या वह स्वतंत्र है? खैर, यह सचमुच दिलचस्प है कि बुद्धि इसके साथ कैसे खेलती है। नीतिवचन के अध्याय 9 में मैडम विजडम अध्याय 9 श्लोक 4 से 6 में बोल रही हैं। वह कहती हैं, जो कोई सरल हो वह यहीं आ जाए। यह एक निःशुल्क ऑफर है। वह मूल रूप से कह रही है, कोई भी मेरे पास आ सकता है। यदि आप सरल हैं, यदि आप मूर्ख हैं, तो वह एक साधारण व्यक्ति है और आप उस तरह से मूर्ख हैं, एक भोला व्यक्ति यहां आ सकता है। और इसलिए मूल रूप से जिसके पास समझ की कमी है, वह कहती है, आओ और मेरी रोटी खाओ और मेरी शराब पियो, मैंने मिलाया है। तो वह आमंत्रित कर रही है, मूलतः खुला निमंत्रण। वह कह रही है, अंदर आओ। यह एक निःशुल्क निमंत्रण है। तो फिर यह बहुत आसान है, ये बहुत ही सरल है। बस अंदर आओ और अरे, मैडम विजडम के साथ रात्रि भोज पर बैठकर ही आप बुद्धिमान हो जाते हैं। और फिर ये कहती है, वह कहती है, अपने सरल तरीके छोड़ो और अंतर्दृष्टि के रास्ते पर जियो और चलो। तो दूसरे शब्दों में, हाँ, आप यहां आ सकते हैं। खाना मुफ्त है। यह एक अद्भुत वातावरण है। मैं तुम्हें 7 खंभों और सामान के साथ अपने अद्भुत घर में आमंत्रित करता हूं, लेकिन आपको अपने सरल तरीके छोड़ने होंगे। आपको बुनियादी तौर पर बदलना होगा। तुम्हें जीना है और तुम्हें अंतर्दृष्टि के रास्ते पर चलना है, और इसलिए तुम्हें अपने सरल तरीके छोड़ देने चाहिए। अब अचानक यह असंभव नहीं है, लेकिन आपको विशिष्ट विकल्प चुनना होगा, और इसलिए उसे आसान हिस्सा मिल गया है और उसे कठिन हिस्सा मिल गया है। और वह उन्हें बीच के इस तरीके से एक साथ रखती है कि न तो इसे बहुत आसान बनाए और न ही इसे बहुत कठिन बनाए। तो आपके पास प्रेरणाएं हैं। आपके पास मूलतः 3 विकल्प आते हैं। आपको आकर्षण और परहेज मिल गया है। मुझे इस तरह से शुरुआत करने दीजिए। आपके पास आकर्षण और आकर्षण, 2 सकारात्मक आकर्षण और आकर्षण हैं। और इसलिए उदाहरण के लिए यह नीतिवचन 22 श्लोक 1 और 4 में नीतिवचन से बेहतर है। महान धन की तुलना में एक अच्छा नाम चुना जाना चाहिए, और चांदी और सोने की तुलना में एहसान बेहतर है। तो मूल रूप से यह आकर्षण कह रहा है, सोने के स्थान पर एक अच्छा नाम चुना जाना है और इसलिए यह सकारात्मक होगा। एहसान चांदी या सोने से बेहतर है और इसलिए वे दोनों सकारात्मक हैं। आकर्षण और आकर्षण इस युवा व्यक्ति को उस ओर आकर्षित करने के लिए, वहां आकर्षण से बचाव है और हमने इसे कई बार देखा है। एक बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए खुशी आकर्षण लाता है, मूर्ख पुत्र अपनी माँ के लिए दुखदायी होता है, नकारात्मक होता है और वह एक परिहार है, इसलिए आकर्षण परिहार है। तो आपके पास आकर्षण है, आकर्षण बेहतर से खावत में है। दूसरे सेट में आपको आकर्षण परिहार मिला है और फिर आपके पास परिहार है और ये दोनों एक तरह से निषेधात्मक हैं। जो कोई अपना धन बढ़ाने के लिए गरीबों पर अत्याचार करता है या अमीरों को दान देता है, वह केवल गरीबी में आएगा। जो कोई गरीबों पर अत्याचार करता है वह बचना है। आप स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और आप स्वयं गरीब बनने वाले हैं। इतना नकारात्मक परिहार, इतना परिहार। तो आपके पास नकारात्मक के प्रति आकर्षण बचाव बहुत शक्तिशाली था। आपके पास परिहार है और इसके साथ ये तीन प्रकार के विकल्प हैं। अब प्रेरणा का एट्रिब्यूशन सिद्धांत प्रेरणा को देखने का एक और तरीका है। मैं सफल क्यों होऊंगा? मैं किसी प्रकार के व्यवहार में आगे क्यों बढ़ जाता हूं या असफल क्यों हो जाता हूं? क्या यह क्षमता है? दूसरे शब्दों में, मैं पानी से टकराया और मैं उठ गया और मैं वास्तव में तेजी से तैर सकता था और इसलिए मैं प्रयास में लग गया। क्या यह प्रयास है? क्या मैंने बस प्रयास किया और मैं सफल हो गया? कभी कभी आप प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन क्या यह प्रयास है? क्या यह भाग्य है? यह बस ऐसे ही हुआ और यह अवश्य ही भाग्य रहा होगा। कार्य कठिनाई, दूसरे शब्दों में कार्य बहुत आसान था। यह स्पष्ट था कि मैं यह कर सकता हूं या यह बहुत कठिन था। ऐसा करने के बारे में सोचना असंभव था। फ्यूजन के बारे में बात करें, वे प्रकाश के संलयन के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं 1970 के दशक में कॉलेज में था तब से वे फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं और अब अचानक फ्यूजन वापस आ रहा है। 70 के दशक में यह एक सपना था कि क्या होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। हमारे पास इसे करने की तकनीक नहीं थी। अब जाहिरा तौर पर वे इसके किनारे पर पहुंच रहे हैं और कौन जानता है कि क्या होगा, लेकिन कार्य कठिन है। संलयन करना और उससे उचित तरीकों से ऊर्जा प्राप्त करना वास्तव में अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन अब मैंने लगभग एक पीढ़ी दे दी है, वे स्थितियों में काम कर रहे हैं। इसलिए कार्य अहंकार से जुड़े होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप कुछ करते हैं, आप किसी चीज पर वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और आप उसे करते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं और आपने अपनी स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और इसमें कुछ जोखिम भी शामिल था, लेकिन आपने जोखिम पर काबू पा लिया जबकि अन्य केवल कार्य संबद्ध हैं। दूसरे शब्दों में, यह केवल कार्य की कठिनाई है, स्वयं के प्रति कोई आरोप नहीं। नीतिवचन कई कार्यों को चरित्र से जोड़ते हैं और इसलिए वे अहंकार से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए नीतिवचन 10:05 को लीजिए। जो गर्मियों में बटोरता है वह समझदार पुत्र है। जो गर्मियों में बटोरता है वह समझदार पुत्र है। और इसलिए आपको जो मिला है वह एक गतिविधि है और फिर एक मूल्यांकन है, और तब जो व्यक्ति गर्मियों में इकट्ठा होता है उसे अपने आप में एहसास होता है कि वह एक समझदार बेटा है। और आप कहते हैं, वाह, यह एक समझदार बच्चे के लिए अच्छी बात है। जो कटनी के समय सोता है वह लज्जित करने वाला बालक है। तो कोई व्यक्ति जो आलसी है, पूरे दिन वीडियो गेम खेलता है और अपने क्षितिज का विस्तार नहीं कर रहा है, या ऐसा कुछ है, यह शर्मिंदगी का कारण बनने वाला है। यह शर्मसार करने वाला है। और इसलिए फिर वे खुद को पहचानते हैं और कहते हैं, हम्मा, मैं किस तरह का बच्चा हूँ? क्या मैं वह हूँ जो बाहर जाता हूँ और उसके पीछे जाता हूँ, या मैं वह हूँ जो इधर उधर बैठा रहता हूँ, इधर उधर गड़बड़ करता हूँ, हर समय टिक टॉक करता हूँ और अपने सिर को खराब करता हूँ और अन्य चीजें करता हूँ जो मुझे परेशान कर रही हैं और इसलिए शर्मिंदगी ला रही हैं, शर्म ला रही हैं अपने माता पिता के लिए, दूसरों को शर्मसार करने वाला, खुद को शर्मिंदा करने वाला। और इसलिए मूल रूप से ये गुण ही यह हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। किसी की आत्म पहचान तब होती है जब बच्चे अपने कार्यों के आधार पर पहचानना शुरू करते हैं कि क्या उनके कार्य बुद्धिमान हैं या मूर्खतापूर्ण हैं, क्या उनके कार्य आलसी हैं या उनके द्वारा चुने गए विकल्प बुद्धिमान, धार्मिक, अच्छे और मेहनती हैं या नहीं। मूर्ख, दुष्ट, बुरा और आलसी। तब ज्ञान का आंतरिककरण। तो फिर क्या होता है कि ऋषि इस युवा व्यक्ति से उनके व्यवहार और उनके चरित्र को देखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं किस प्रकार का चरित्र, किस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार के परिणाम देख रहा हूँ, और क्या इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख, दुष्ट, बुरा व्यक्ति या आलसी हूँ, या इसका मतलब यह है कि मैं एक। और फिर वे उन चीजों को एक व्यक्ति के रूप में खुद से जोड़ना शुरू करते हैं और फिर अपनी पहचान बनाते हैं और उनकी पहचान उनके कार्यों पर आधारित होती है। यदि आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो आज हम अपनी पहचान को आधार बनाना चाहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। तुम बस इतना कहो, मैं एक चट्टान के रूप में पहचानता हूँ और मैं एक चट्टान हूँ और मैं एक द्वीप हूँ। मुझे खेद है, मैं गाने पर वापस जा रहा हूँ, लेकिन आज आप इसे लगभग किसी भी चीज के रूप में पहचान सकते हैं। और मैं बस यही सोचता हूँ कि यह हमारे युग की मूर्खता को दर्शाता है, जहाँ नीतिवचन कह रहे हैं, आपका चरित्र क्या है, आपके कृत्य क्या दर्शा रहे हैं, आपके कार्य आपके चरित्र के बारे में क्या दर्शाते हैं। इसलिए इन विकल्पों के परिणाम स्वरूप चरित्र निर्धारण और उसके बाद आने वाले परिणाम सामने आते हैं। नीतिवचन 10.18, जो बैर को छिपा रखता है उसके होंठ झूठ बोलते हैं। जो बैर छिपा रखता है उसके होंठ झूठ बोलते हैं। और जो कोई निंदा बोलता है वह मूर्ख है। जो कोई निंदा बोलता है वह मूर्ख है। अब ऐसा लगता है कि हमारी आधी संस्कृति बदनामी पर बनी है। एक संस्कृति के रूप में यह हमारे बारे में क्या कहता है? यह हमारे बारे में क्या कहता है? वैसे भी तो बस कुछ बातें सोचने लायक हैं। इन लौकिक वाक्यों को सिखाकर ऋषि बच्चे या व्यक्ति, युवा व्यक्ति, छात्र में एक जिम्मेदार सेठ का निर्माण करते हैं। इसलिए इन कहावतों पर गौर करके छात्र चीजों का श्रेय खुद को देना सीखता है, चाहे वे बुद्धिमान हो या मूर्ख, चाहे वे मेहनती हो या आलसी, चाहे वे दुष्ट हो या चाहे वे धर्मी हो। और इसलिए छात्र इस विशेष व्यवहार में संलग्न होता है और फिर उससे अपनी पहचान बनाता है। अब तो यह छात्र में नियंत्रण का यह आंतरिक स्थान, नियंत्रण का यह आंतरिक स्थान बनाता है जिसे छात्र या युवा व्यक्ति को चुनना होगा। और विकल्प परिणामों में फर्क डालते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसके बाद छात्र सीखता है, मैं अपने चरित्र में जो कार्य करता हूँ उनके परिणामों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये परिणाम मेरे जीवन में आते हैं, मेरी पसंद मायने रखती है, मेरी पसंद मायने रखती है। और ये बहुत बड़ी बात है। तो ऋषि मूल रूप से अपने युवा व्यक्ति को सीखी हुई असहायता के विचार से दूर कर रहे हैं। वह उन्हें सीखी हुई असहायता से दूर कर रहा है। मैं कुछ भी करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा होऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वही बात है अगर मैं नहीं, 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 नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पसंद आपके कृत्यों से फर्क पड़ता है और इससे फर्क पड़ता है। आपके चरित्र आपके द्वारा चुने गए विकल्पों से फर्क पड़ता है। इसलिए यह सीखी गई असहायता से बचता है और दूसरों को दोष देने की प्रतिक्रिया से भी बचता है। ठीक है, यह कहने से कि ठीक है, मैंने एक विकल्प चुना, लेकिन यह वास्तव में मेरी गलती नहीं थी, यह दूसरा व्यक्ति था। नहीं, नीतिवचन कहते हैं युवा व्यक्ति आप चुनाव करें। आपको एक तरह से हिम्मत जुटानी होगी और कहना होगा, आप जानते हैं मैंने वह विकल्प चुना है, परिणाम मेरा है। जोको विलिंक नाम का एक लड़का है जिसकी बात मेरा बेटा काफी सुनता है, और यह लड़का नेवी सील था। जोको वास्तव में नेवी सील्स का प्रमुख था, और एक बार वह सचमुच कठिन परिस्थिति में फंस गया। मुझे यकीन है कि मैं इस कहानी को खत्म करने जा रहा हूँ। जोको को कहानी सुनाते हुए सुनना बेहतर है, लेकिन फिर भी वह वर्णन करता है कि वे इराक में गोलाबारी में थे। यह पुराने दिनों में था, और एक दुर्घटना हुई जहां वे वास्तव में अपने ही लोगों पर मित्रतापूर्ण गोलीबारी करने लगे, और किसी को चोट लगी, हत्या हुई या कुछ और इसलिए वे बाद में एक पोस्ट डिब्रीफ कर रहे थे, और जोको को उठकर कहना पड़ा, क्या हुआ, क्या गलत हो गया, हमने अपने ही लोगों को गोली क्यों मारी। और इसलिए फिर जोको उठे और मूल रूप से कहा, ठीक है, यहां गलती किसने की, और वह नेता थे, और ये अन्य लोग जो स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे, उन्होंने उससे कहा, आप जानते हैं हम देखना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभालते हैं। तो पीछे से एक आदमी ने कहा, ठीक है, यह मेरी गलती थी। रेडियो बंद हो गया और कोई संचार नहीं था, तो इसके लिए मैं ही दोषी हूं। और जोको उसकी ओर देखता है और कहता है, यह तुम नहीं थे। दूसरे आदमी के पास जाता है, इसे मैंने किया है, मैंने वह किया। उसने कहा, नहीं, वह तुम नहीं थे। जोको ने कहा, मैं नेता था, यह आप लोगों में से कोई नहीं था, वह मैं था। द बक स्टॉप्स हियर, हो गया, हमने अपने ही लोगों को गोली क्यों मारी। और इसलिए फिर जोको उठे और मूल रूप से कहा, ठीक है, यहां गलती किसने की, और वह नेता थे, और ये अन्य लोग जो स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे, उन्होंने उससे कहा, आप जानते हैं हम देखना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभालते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, मैं ही हूं। मूलतः ये सभी लोग उसका मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहता है, मैं ही हूं, मैं नेता था, और इसलिए मुझे ही दोष लेना होगा, मैंने ही गड़बड़ की है, क्योंकि अगर मैंने अपना काम ठीक से किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और इसके अलावा मैंने यह किया होता, और मैंने यह किया होता, और मुझे यह करना चाहिए था, और मुझे यह करना चाहिए था। और अगर मैंने वे चार चीजें की, तो उन्होंने कहा, मैं वह गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अब लोगों को सब पता चल गया कि गलती किसकी थी। वास्तव में यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह ऐसा था, मुझे कैसे कहना चाहिए, यह वही है, मुझे लिंग शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है, लेकिन वह खड़ा हुआ और इसके बारे में एक आदमी था और दोष ले लिया। उसने दोष किसी और पर नहीं मढ़ा या किसी ऐसे व्यक्ति को बस के नीचे नहीं फेंका जो उसके नीचे था। वह खड़े हुए और दोष स्वयं अपने ऊपर ले लिया। इससे उन सभी लोगों का सम्मान इकट्ठा हुआ जो अब उसके लिए मरने को तैयार होंगे। और फिर ये लोग जो उसका मूल्यांकन कर रहे थे, उन्होंने कहा, हे भगवान, यह आदमी ईमानदार है। यह हमारे समय और युग तथा सामान में एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही इस बारे में उनका विश्लेषण बिल्कुल गलत है और वह जानते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमसे बेहतर कौन हो सकता था और उन्होंने उसे नेतृत्व में छोड़ दिया। काश आज हमारे पास भी ऐसे नेता होते। लेकिन फिर भी हम बस यही कह रहे हैं कि असहायता सीखें और दूसरों को दोष दें। ऋषि युवा व्यक्ति को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव करते हैं, आपको परिणाम मिलते हैं। दूसरे लोगों को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम असहाय हो, आपकी पसंद मायने रखती है। और इसलिए इस प्रकार की चीजें। अब इस प्रेरक मनोविज्ञान का दूसरा पहलू बाहरी और आंतरिक प्रेरणा है। उदाहरण के लिए, बाहरी प्रेरणा तब होती है जब मेरे पिता ने मुझे चार्ल्स स्पर्जन पर उन 22 पुस्तकों को पढ़ने के लिए भुगतान किया। ठीक है, इसे बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। वह मुझे प्रेरित कर रहा है, आप यह गतिविधि करें, मैं तुम्हें यह बाह्य वस्तु दूंगा। यह मेरे से बाहर है, इसमें एक आंतरिक प्रेरणा है। एक व्यक्ति कुछ सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा करने में आनंद आता है। पुल से बाहर कूदना मजेदार था। हमने यह किया क्यों? क्योंकि यह आंतरिक है, हमें इसे करने में मजा आता है। यह हमारे लिए एक चुनौती थी और हमने चुनौती स्वीकार कर ली। यह बहुत ही मजेदार था। ठीक है। और होता यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको भुगतान करना बंद कर देता है तो वे उस बाहरी प्रेरणा को नोटिस करते हैं। कई बार लोगों के लिए, यदि उन्हें कुछ करने के लिए भुगतान किया जाता है तो वे इसे करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, इसे करेंगे। लेकिन फिर जब वेतन मिलना बंद हो जाता है तो वे व्यवहार करना बंद कर देते हैं। इसलिए बाह्य प्रेरणा का प्रेरणा पर कमजोर प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या क्या वे केवल वेतन पाने के लिए प्रेरित होते हैं? ठीक है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है कि उन्हें इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद है। आपको वह चीज ढूंढने की जरूरत है जिसे करना आपको पसंद है। अब आपको दूसरी नौकरी लेनी होगी और वह दूसरी नौकरी करनी होगी और उन अन्य चीजों को करने के लिए चीजों पर काम करना होगा। लेकिन यह पता लगाएं कि आप क्या करना पसंद करते हैं और ऐसा तरीका ढूंढें जिससे आप जीवन को उस चीज और चीजों के करीब लाने के लिए प्रेरित कर सकें जो आपको करना पसंद है। तो इस तरह यह आंतरिक है। आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप इसे महत्व देते हैं और आप इसे पसंद करते हैं। अब सतही तौर पर नीतिवचन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ बाहरी है। तुम्हें पता है, ऐसा करो और तुम अमीर बन जाओगे, ऐसा करो और प्रभु तुम्हें भोजन देगा, ऐसा करो तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा और तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम मर जाओगे जीवन अगर आप अच्छे काम करते हैं। और इसलिए यह बहुत बाहरी लगता है। हालांकि यह सच नहीं है। बहुत सी कहावतें इसे चरित्र परिणाम में बांधती हैं और इसलिए इसे बाहरी या आंतरिक प्रकार की प्रेरणा की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक ले जाती हैं। हालांकि मूलतः नीतिवचन बाहरी और आंतरिक दोनों का उपयोग करते हैं, नीतिवचन में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की चीजें, अब प्रेरणा और भावनाएं, यह एक और मामला है जो सामने आया है। उन्होंने प्रेरणा और भावनाओं के बारे में बहुत अध्ययन किया है और यह बहुत दिलचस्प है। कहावते भावनाओं को कम नहीं आंकती। मैंने 41 वर्षों तक अकादमी और कॉलेजों में पढ़ाया है और अकादमी या शैक्षणिक वातावरण में कई बार भावनाओं का ह्रास होता है। भावनात्मक सोच का बहुत अभ्यास किया जाता है। हमें तार्किक अधिक विश्लेषणात्मक प्रकार की सोच पसंद है। मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे गणित में अपने प्रमुख विषयों में प्रशिक्षित किया गया था और मैंने कई वर्षों तक तर्क सिखाया है, इसलिए मैं तार्किक कार्य कर सकता हूं। लेकिन भावनाओं में कुछ तो बात है जो दिल को छू जाती है, और नीतिवचन बच्चे के दिल के पीछे है, और इसलिए यह भावनाओं को कम नहीं करता है। और अब फिर से तुम्हें सावधान रहना होगा। आप इसे भावनात्मक पक्ष और अन्य चीजों पर अति कर सकते हैं, लेकिन आप इसे संज्ञानात्मक पक्ष पर भी अति कर सकते हैं, और इसलिए एक संतुलन की जरूरत है। आपने कभी देखा है कि ये लोग वास्तव में बहुत संज्ञानात्मक होते हैं। वे प्रतिभाशाली स्तर के संज्ञानात्मक लोग हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वे बच्चों की तरह हैं, और इसलिए आपको यह विभाजन और सामान मिलता है। और इसलिए आप जानते हैं, आप एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो संपूर्ण व्यक्ति हो। तो नीतिवचन अध्याय 11 श्लोक 10 में यह कहा गया है, गलत संतुलन घृणित या घृणित है। प्रभु घृणा करते हैं, प्रभु झूठे संतुलन से घृणा करते हैं। ठीक है, यह दिखावा है। क्या भगवान में भावनाएं होती हैं? क्या वह उन भावनाओं को व्यक्त करता है? हाँ, एक झूठा तराजू जहां कोई यह कहकर किसी को चीरने की कोशिश कर रहा है कि इस चीज का वजन 8 औंस है और इसका वजन केवल 6 औंस है, और आप जानते हैं किसी व्यक्ति को इस तरह से फाड़ने की कोशिश की जा रही है, परंतु उचित तौल से उसका परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन उचित वजन ही उसकी खुशी है। और इसलिए जब आप किसी व्यावसायिक संदर्भ में काम करते हैं तो आप लोगों को छोटा नहीं करते हैं। ठीक है, आप वही करें जो उचित है, और यदि आप इससे अधिक हैं तो आप वह कर सकते हैं जो उदार हो, और यह भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान स्वयं भावनात्मक तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं, और कई कहावतें इन भावनाओं के बारे में भी बात करती हैं, यहां तक कि ईश्वर के भय के बारे में भी। और आप भावनाओं, ईश्वर के भय के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है कि यह एक पूरी तरह से अलग चर्चा है और हम शायद ईश्वर के भय पर एक और व्याख्यान देंगे, लेकिन हर कोई हतोत्साहित करने और भावुक करने की कोशिश करता है। ईश्वर का भय वास्तव में भय नहीं है। मैं यहां केवल आपको यह बताने के लिए आया हूं कि ईश्वर का भय है, भय है, डर है, आतंक है। ठीक है, और आप कहते हैं ठीक है, मुझे ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, आतंक से नहीं। अब आपको यह समझना होगा कि ये चीजें अधिक सूक्ष्म हैं, नहीं, यह भावना नहीं है। इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति आदर या श्रद्धा। हाँ, कुछ संदर्भों में ऐसा होता है, लेकिन अन्य संदर्भों में इसका मतलब आतंक है। तो आपको संदर्भ को देखना होगा। प्रसंग ही अर्थ निर्धारित करता है। तो फिर भी चलिए प्रेरणा की संरचना पर आते हैं। तो इस लेख के अंत में और मूल रूप से प्रेरणा की यह चर्चा मेरे द्वारा लिखे गए एक लेख से आती है, द जर्नल ऑफ द इवेंजेलिकल थियोलॉजिकल सोसाइटी। और इसके अंत में मेरे पास एक चार्ट है। और यह चार्ट मूल रूप से नीतिवचन 10 से 15 के उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है जो मुझे उन अध्यायों में मिले। उनमें से कुछ उद्देश्य निम्न थे। तो मेरे पास नीतिवचन 10 से 15 में प्रेरणा पर एक चार्ट था। एक तो नीचे आती है व्यक्तिगत व्यक्ति की चिंता, व्यक्तिगत चिंता। वह तो आप ही हैं। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत चिंता, दूसरों के लिए आपकी चिंता और भगवान के लिए आपकी चिंता। तो प्रेरक क्या है? अपनी चिंता, दूसरों की चिंता, भगवान की चिंता, वो तीन। तो आप नीचे आएं, उन तीनों की ओर शाखाएं फैलाएं। अब मैं उन तीनों के बारे में जानना चाहता हूं और व्यक्तिगत चिंता या जीवन और मृत्यु में से प्रत्येक का उदाहरण देना चाहता हूं। यह नितांत निजी जीवन और मृत्यु है। उदाहरण नीतिवचन 10 श्लोक 27 में पाए जाते हैं। प्रभु का भय जीवन को बढ़ाता है, परंतु दुष्टों के वर्ष छोटे होंगे। मौत, ठीक है, फिर से प्रभु का भय जीवन को बढ़ाता है। सकारात्मक, दुष्टों के वर्ष छोटे कर दिए जाएंगे। उस विपरीत समानता को वहां ले जाएं। ठीक है, तो जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, हानि और लाभ। नीतिवचन 13 भी, मनुष्य अपने मुंह के फल से अच्छा खाता है, परंतु विश्वासघाती की इच्छा हिंसा की होती है। ठीक है, तो कोई अच्छे की ओर जाता है, दूसरा बुरी चीज की ओर ले जाता है। सुरक्षा बनाम असुरक्षा, डॉक्टर लैरी क्रैब नामक एक साथी के अधीन एक अध्ययन, जिसका हाल ही में निधन हो गया, ने मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डाला। वह और उनके सहयोगी डैन एलेंडर। और नीतिवचन 10 श्लोक 25 में यह कहा गया है, जब तूफान गुजर जाता है तो दुष्ट नहीं रहता, परंतु धर्मी सर्वदा स्थिर रहता है। सुरक्षा, सुरक्षा व्यक्ति के अंदर के गहरे उद्देश्यों में से एक है। हम अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिए अपने जीवन का कितना समय व्यतीत करते हैं? हम यहां सामाजिक सुरक्षा में हैं। तो सुरक्षा, और यहां नीतिवचन कहता है, परंतु धर्मी सर्वदा स्थिर रहता है। वहां उस चरित्र और परिणाम को जोड़ता है। भूख, भूखा और तृप्त रहना। कहावतें, फिर से यह व्यक्तिगत स्तर पर है, भूखा रहना। अगर आपके पास खाना नहीं है तो भूखा रहना बहुत बड़ी बात है। नीतिवचन 10 पद 3, यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं रहने देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा को विफल कर देता है। यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं रहने देता, परंतु वह दुष्टों की लालसा को विफल कर देता है। यह नकारात्मक हो जाता है। क्रोध करना और प्रसन्न होना, प्रसन्न होना और क्रोध करना। नीतिवचन 10:24, परंतु दुष्ट भय उस पर क्या आ पड़ेगा? उस पर क्या क्या दुष्ट भय आएंगे, परंतु धर्मी की इच्छा पूरी होगी। तो इसका एक नकारात्मक पहलू है। दुष्टों को जिस बात का भय होता है वह उस पर आ पड़ेगी, परंतु धर्मी की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वहां खुशी होगी और सामान, चरित्र उपलब्धि, फिर चीजों के व्यक्तिगत पक्ष पर चरित्र उपलब्धि, धन गरीबी, धन और गरीबी, एक ढीला हाथ। ढीला हाथ दरिद्रता का कारण बनता है। ऐसी कई चीजें हैं जो गरीबी का कारण बनती हैं, लेकिन यह उनमें से एक है। ढीला हाथ दरिद्रता का कारण बनता है। परिश्रम का हाथ धनवान बनाता है। परिश्रमी का हाथ धनवान बनाता है। नीतिवचन 10:4, सफलता और असफलता, सफलता और विफलता। नीतिवचन 10:24, दुष्टों को जिस बात का भय होता है वह उस पर आ पड़ेगी, परंतु धर्मी की इच्छा पूरी हो जाएगी। सफलता और विफलता। चरित्र गुण। जो गर्मियों में बटोरता है वह समझदार पुत्र है। जो कटनी के समय सोता है वह लज्जित करने वाला पुत्र है। ठीक है, तो वे चरित्र विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति स्वयं बनाता है। अब सामाजिक मूल्यांकन। एक आशीर्वाद और अभिशाप। जो अन्न रोक लेता है उसे लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेचता है उसके सिर पर आशीष होती है। दोस्त और त्यागा जा रहा है। दोस्त और त्यागा जा रहा है। नीतिवचन 14:20। गरीबों को उनके पड़ोसी भी नापसंद करते हैं, लेकिन अमीरों के बहुत से दोस्त होते हैं। अपमान और सम्मान। शर्म और सम्मान। उन संस्कृतियों, प्राचीन संस्कृतियों में एक बहुत बड़ी चीज शर्म और सम्मान है, और आज तक कई संस्कृतियों में। नीतिवचन अध्याय 10:7। धर्मी की स्मृति तो आशीष है, परंतु दुष्ट का नाम सड़ जाता है। शर्म करो, तो शर्म और सम्मान इसमें आते हैं। शासन करना और सेवक बनना। नीतिवचन अध्याय 12:24। मेहनती का हाथ शासन करेगा। मेहनती का हाथ शासन करेगा, जबकि आलसी को बेगार में डाल दिया जाएगा। मूलतः गुलामी में, जबकि आलसियों को गुलामी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चरित्र प्रेरणा। अब दूसरों की चिंता, वह सब व्यक्तिगत चिंता थी। अब हम दूसरों की चिंता को देखेंगे और देखेंगे कि दूसरों के लिए प्रेरणा कहाँ है। दूसरे मदद करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। नीतिवचन 10:17। जो कोई उपदेश को मानता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट को अस्वीकार करता वह दूसरों को भटका देता है। परंतु जो डांट को अस्वीकार करता वह दूसरों को भटका देता है। तो दूसरे शब्दों में, तुम दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो क्या? आप वह काम करते हैं जो गलत है। लोग आपका अनुसरण करने वाले हैं, आप उन्हें नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। वे दूसरों को गुमराह करने वाले हैं, तो वहां चिंता दूसरों की है। प्रतिष्ठा। मेरा बेटा इसे प्रतिष्ठा प्रबंधन कहता है। नीतिवचन 11:11। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, परंतु दुष्टों का मुंह उलट दिया जाता है। इसलिए ईमानदार शहर का आशीर्वाद ऊंचा है, और इसलिए वहां एक प्रतिष्ठा है। आनंद और दुर्हक। बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए खुशी लाता है, मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुःखदायी होता है। नीतिवचन 10:01। तो खुशी और दुख, और आप जो सुख और दुःख पैदा कर रहे हैं वह आपके माता पिता में है, चाहे माता पिता को सुख मिले या चाहे माता पिता को दुःख मिले। माता पिता अपने बच्चों या अपने बच्चों के चरित्र से जुड़े होते हैं। अब तो यह है, हमने कुछ को देखा, और यहाँ व्यक्ति सकारात्मक प्रेरणा, किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक प्रेरणा, जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ सूचीबद्ध है। हमने दूसरों के लिए प्रेरणा पर ध्यान दिया, और अब हम ईश्वर के प्रति धार्मिक प्रेरणाओं या चिंता को देखना चाहते हैं। कहावतों में इनकी संख्या बहुत है। नीतिवचन, परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है और किस चीज से घृणा करता है। नीतिवचन 11:1। झूठे तराजू से घृणित काम होता है या यहोवा उससे घृणा करता है, परंतु उचित तराजू से वह प्रसन्न होता है। क्या आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं? व्यापार में निष्पक्ष रहें। उपकारी और दंड देने वाला। तो भगवान एक परोपकारी और दंड देने वाले के रूप में सामने आते हैं। नीतिवचन 10:03। यहोवा धर्मियों को भूखा न रहने देगा, परंतु दुष्टों की लालसा को टाल देता है, अत वह दुष्टों को दंड देता है। और इसलिए हमारी प्रेरक संरचना में ईश्वर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भगवान कहीं नहीं है। नीतिवचन 15:3। यहोवा की दृष्टि सब स्थानों में रहती है और वह भले बुरे पर दृष्टि रखता है। यदि आप जानते कि ईश्वर आपको देख रहा है तो क्या आप ऐसा व्यवहार करेंगे? यदि आप जानते कि ईश्वर आपको देख रहा है तो क्या आप उस प्रकार का चरित्र विकसित करेंगे? और यहाँ नीतिवचन कह रहे हैं कि ईश्वर देख रहा है। यह आपके लिए एक निश्चित प्रकार की गतिविधि करने के लिए प्रेरणा है। तो निष्कर्ष में इस पूरी चीज को फिर से एक साथ समेटने के लिए हमने देखा कि नीतिवचन का मूल कार्य परिणाम नहीं है। यह कार्य परिणाम नहीं है, जैसा कि कई लोगों ने कहा है। नीतिवचन में यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पाया कि चरित्र परिणाम अधिक थे, और इसलिए हम उस प्रकार का समायोजन करना चाहते हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा उनके कार्य परिणाम या चरित्र परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने का महत्व, दूसरे शब्दों में उनके कार्य मायने रखते हैं। उनका चरित्र और भी अधिक मायने रखता है। यह सीखी हुई मजबूरी नहीं है। आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आप चुनाव करते हैं और वे विकल्प आपके चरित्र का निर्धारण करते हैं। वे विकल्प आपके कृत्यों और आप पर आने वाले परिणामों को प्रेरित करते हैं, और इसलिए कृत्य मायने रखते हैं। और इसलिए यह एक ऐसी संस्कृति है जहां यह कहा जाता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये सच नहीं है। और इसलिए आपको यह कहने में सावधानी बरतनी होगी कि सीखी गई असहायता के विरुद्ध लड़ना अच्छा नहीं है। नंबर 2 अक्सर या के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह उद्देश्य उपवाक्य चेतावनियों में है। अध्याय 1-9 तक हमने वास्तव में उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अध्याय 10-15 पर विचार कर रहे हैं। क्षमा करें, अध्याय 1-9 तक एक चेतावनी है और एक उद्देश्य उपवाक्य है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे मत छोड़ो। चेतावनी निषेधात्मक, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे मत भूलना, क्योंकि वे तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे, के लिए और यह की शब्द है जो हमने पहले कहा था। तो आपको चेतावनी प्लस की प्लस मकसद उपवाक्य मिलता है, लेकिन वे सती व्याकरण में थे। अध्याय 1-9 तक इसे देखना आसान है। जब आप अध्याय 10-15 तक पहुंचते हैं तो यही हमें गहरी संरचना में जाना होता है और देखना होता है कि वहां वास्तव में क्या प्रेरणादायक था। और आपके पास यह प्रेरक उपवाक्य नहीं है, लेकिन आपको वाक्य कथनों में और विशेष रूप से इस विपरीत समानता के लिए प्रेरणा मिली है। एक बुद्धिमान पुत्र पिता के लिए खुशी लाता है, मूर्ख पुत्र अपनी माता के लिए दुखदायी होता है। यह जुड़ता है। ठीक है, तो आप अपने माता पिता के लिए खुशी लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उन्हें दुख न हो, और इसलिए यह इसे विपरीत समानता के साथ दोगुना कर देता है। तो जबकि नीतिवचन की किताब के बाहर की कहावतें आम तौर पर एक पंक्ति वाली और छोटी, मीठी, नमकीन होती हैं, ठीक है, और नीतिवचन की किताब में उस समय के लोगों द्वारा स्वीकार किए गए ये विरोधाभासी समानताएं और काव्यात्मक संरचनाएं हैं जहां दो पंक्तियां एक दूसरे के विपरीत रखी गई हैं, अत इसका प्रेरक प्रभाव दोगुना हो जाता है। पुस्तक में मुख्य प्रेरणा लोक व्यक्ति स्वयं के लिए चिंतित है। यह और यह वैध है। आपको अपने बारे में, जीवन और मृत्यु, हानि, लाभ और दूसरों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। और वे उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें खुशी और दुख और भगवान के लिए चिंता हो रही है, जो भगवान को पसंद है, भगवान और जिसे भगवान घृणा करते हैं। और फिर चौथा, पढ़ाते या पालन पोषण करते समय किसी को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि क्या करना है। पढ़ाते या पालन पोषण करते समय माता पिता या शिक्षक को न केवल यह बताना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि छात्र को क्या प्रेरित करता है या बच्चा, और इसलिए आपको इसका कारण बताना होगा। आपको इसका कारण बताना होगा क्योंकि इन परिणामों के कारण ऐसा करें। और इसलिए एक माता पिता के रूप में आपको अपने बच्चे को पाने के लिए अपने छात्र को इस क्रिया के परिणाम को देखने के लिए संबंध बनाना होगा। इस चरित्र का यह परिणाम होता है, इसलिए आपको उसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और इसलिए आप युवा व्यक्ति को कार्य और परिणाम तथा उनके चरित्र और परिणाम के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं। और फिर उस संरचना को बनाते हुए आप उन्हें यह बताकर ऐसा करते हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे यह गतिविधि क्यों करनी चाहिए, और आप उसे समझाते हैं। और जैसा कि हमने कानून में कहा, लगभग 30% कानून आपको यही स्पष्टीकरण देता है। भगवान नीचे नहीं आते और कहते हैं, इसे करो क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा, ऐसा करो क्योंकि इससे तुम्हें जीवन मिलता है, इससे तुम्हें मृत्यु मिलती है। और फिर उस संरचना को बनाते हुए आप उन्हें यह बताकर ऐसा करते हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे यह गतिविधि क्यों करनी चाहिए, और आप उसे समझाते हैं। और जैसा कि हमने कानून में कहा, लगभग 30% कानून आपको यही स्पष्टीकरण देता है। और इसलिए माता पिता के रूप में हमें जो मैंने कहा उससे आगे जाने की जरूरत है, या आपको यही करने की जरूरत है। लेकिन फिर यह समझाने के लिए कि क्यों, और उसके नीचे धार्मिक, बुद्धिमान और मेहनती होने की प्रेरणा प्रदान करें, और बुद्धि, धर्म और परिश्रम की ओर आकर्षित होने और मूर्खता, दुष्टता और मूर्खता और आलस्य से दूर रहने के लिए। तो यह नीति वचन अध्याय 10-15 में प्रेरणा से संबंधित है, और हमने वहां बहुत सी चीजों का पता लगाया है, और मुझे आशा है कि इससे आपको प्रेरणा और ज्ञान से इसके संबंध को समझने में मदद मिलेगी। इसलिए जब आप नीति वचन पढ़ते हैं तो आप यह खोजते हैं कि ऋषि क्या है, वह कैसे प्रेरित कर रहा है, यहां अंतर्निहित प्रेरणा क्या है, और वह यह कैसे कर रहा है। और फिर हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हम अपने छात्रों और अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इसका आनंद आया होगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट नीतिवचन अध्याय 10-15 में प्रेरणा और विरोधाभासी समानता पर अपने शिक्षण में हैं।